तो आ उपसर्ग को मंत्र में घटा के कैसे देखें? केवल आ को तो देख लेते, आ या ही कहने से काम चल जाता, वायव्य आया ही दर्शते, सामान्य अर्थ करके भी हम छोड़ सकते थे, जबकि निरुक्तकार ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया मंत्रों को घटाने का। फिर भी हमारा ये प्रयास है कि सारे वैयाकरण हैं तो कुछ तो लगा के देखें कि भाई कैसे चीज़ें घटती, और लगभग सभी ने काफ़ी प्रयास तो किया होगा, तो किनको समझ में आ रहा किनको नहीं थोड़ा हाथ खड़ा कर दे, मुझे पता लगे तो मैं आगे चलाऊँ, नहीं तो अगला मंत्र चलाते हैं, वो मंत्र और लिखे हुए हैं। वाय वन आया, मतलब पूरा मंत्र ऐसा है, किसी को समझ में आ गया हो? गौतम जी, अभिषेक जी, हल्का हल्का, चंद्रगुप्त जी को पूरा आ गया, तो चंद्रगुप्त जी ही बताएंगे सबको ताकि पता लग जाए। तो बताइए घटा के इसको, या तो बोर्ड से हटा दिया ना मंत्र, वो तो चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बता दीजिए, इसमें लिखा हुआ है सबने, तो घटा के बताइए।
आयाति दर्शत इमे सोमा अलंकृता विपत्तलेषा पाहि शुद्धि भव। तो प्रथम वायव, हे वायु, हे दर्शत वायु, के संबोधन में है दुरुपद दर्शत और वायु। तो वायु में जो स्वर है वा गति गंधर्वों से पूर्ण प्रत्यय होगा, क्रिया पाद और
ऐसे आ जाए, इधर आ जाइए, फिर आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आके लगाइए, पता नहीं लग रहा ना लोगों के चेहरे।
मोड़े तो दरी पर रख लो, आपको नीचे पैर ठंडा लगेगा।
आओ आओ यहाँ,
गरम लग रहा हूँ
जी, शीतम च उष्णम च। तो अब चंद्रगुप्त जी, जो कल मंत्र में हमने व्याकरण लगाया था, पूरा व्याकरण लगा के आप सबको, जिसको नहीं आया एक बार इनका सुन लीजिए, नहीं आया तो फिर करेंगे, क्योंकि हम ऐसा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो समझ में ना आया हो, भले एक दिन आज इसी मंत्र में और लगे, किंतु प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए। एक दिन लगाएं, दो दिन लगाएं, विषय समय का नहीं, विषय समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने लगाया वैसे लगाना चाहिए, उससे भी अच्छा लगाना चाहिए, तभी ये कक्षा अब आगे चलेगी, सबको आना चाहिए। एक आज हम एक बार और लगवाएंगे, एक दो बार, फिर कल फिर सुनेंगे। लगाइए जी।
तो वायु शब्द है,
मूल ऋग्वेद से लगा रहे हैं, है ना जी।
तो वायु वाति गच्छति जानति इति वायु। तो ये जो पद है वायु, वायु ये संबोधन में है, तो संबोधन से प्रत्यय स्वर से प्रजय, वायु शब्द में प्रत्यय स्वर से अंततः प्राप्त था, किंतु आमंत्रित संजय होने से सामंत्रित से आमंत्रित संजय है, तो आमंत्रितस्य शास्त्रिक से इसको अधिदात हुआ। तो वायु शब्द जो है, वायु शब्द अधिदात हुआ, और यह अनुदातम पदम एक वर्जन। तो एक पद उदात को छोड़कर जो दूसरा पद है उसको अनुदात प्राप्त हुआ। फिर दूसरा शब्द है आयाही, आम पूर्वक या प्रापण धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आयाही शब्द ये धातु रूप बनेगा। तो आयाही में याही और आह, आम पूर्वक तो तिंग तिंग, तो आ है ये अतिंग से उत्तर, जो तिंग है उसको सर्वनिकात होता है, तो आ जो है निपातम निपाता अद्युदाता, तो जो निपात होते हैं वो अद्युदात होते हैं, तो आ का स्वर हुआ अद्युदात, तो आ उदात हुआ, और उससे आगे जो तिंग है वो सर्वनिघात प्राप्त हुआ।
अभी यहीं रुकिए, किसी को यहाँ तक कोई समस्या पूछिए।
वायु है
जी,
तो वायु में पूर्ण प्रत्यय के नित्य अधिनित्य समान लो, वो जावा
जी,
वाक का आ हो गया उदात,
ऊण प्रत्यय है, ऊण
है,
तो ये नित्य देर नित्यम नहीं लगेगा वहाँ, ये ध्यान रखो। हाँ, वो नकार को कहता है और यकार को कहता है, नकार को नहीं करता है वो, ये ध्यान देने की बात है।
हाँ, तो वो वायु का यकार है, ये हो गया स्वर
जी।
तो फिर आगे है आ
जी,
तो आ है निपत
जी,
तो फिर ये अनुदात कैसे,
अनुदात ये उदात स्वरित कौन करता है, अनुदात को सरित कौन करता है, उदात से उत्तर अनुदात को सरित होता है, किंतु यदि साथ में आगे उदात आ गया तो फिर वो नहीं होगा। हाँ, वो वहीं रुकेगा, आगे कार्य नहीं होगा उस पर। तो यहाँ तक बताइए, देखो सबके समझ में जितने भी मंत्र हम ऐसे चलाएंगे, हर मंत्र में लगाएंगे तो 1.5 साल चाहिए, जितना संभव होगा कुछ मंत्रों में अभ्यास के लिए लगाएंगे। मंत्र तो सारे हम ऋग्वेद से मूल से प्रयास है करके चलेंगे, जो निरुक्त में आधे मंत्र आए हैं, पूरे आए हैं तो पूरे का वही अर्थ किया हुआ है, जो आधे आधे आएंगे पूरे मूल से चलाने का प्रयास करेंगे जितना भी कर सकते हैं, समय को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। किंतु ये जो स्वर प्रक्रिया, क्योंकि सारे महाभाष्य पढ़े हुए हैं तो आनी ही चाहिए, अभी भी नहीं आएगी तो फिर कब आएगी, है ना। तो किसी को कोई समस्या यहाँ तक जो चीजें बताई और कीजिए जी।
वायु आया ही, तो वायु शब्द है तो उसमें उण प्रत्यय, अनादिक उण प्रत्यय आया और अतिविक्षण कृतों से युग आगम हुआ तो वायु शब्द बनता है, और इसका संबोधन में ये वायु, तो वायु ये आमंत्रित, ये सामंत्रितम से इसके आमंत्रित संज्ञा है, तो शास्त्रिक जो आमंत्रित सूत्र है उससे अधिदात हुआ, तो वायु जो शब्द है वो अधिदात है।
हाँ, प्रत्यय स्वर से अंतोदात होगा, प्रत्यय स्वर से अंतोदात, प्रत्यय प्रश्य आदिदात, एक ही अच्छा उसमें, तो शब्द जो है ना वो अंतोदात होगा। ऐसा करते हैं, वैसे समझ में नहीं आ रहा तो ये पहला मंत्र है ना ये हटाइए, इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि आज पीछे लग रहे थे, करिए इस पे मंत्र लिख दिया और वहां जाके समझाइए, वो लिख के भी समझाइए, जब तक समझ में आएगा छोड़ेंगे नहीं, इसको बदल फिर लिख देंगे, या तो पीछे अगर पीछे है इसमें दोबारा लिख देंगे, पूरा मंत्र लिखिए, इसका अलग अलग पद पाठ कीजिए और फिर ये समझाइए इनको, क्योंकि सबको समझ में आना जरूरी है। नहीं ऐसा ना लिख के पद पाठ में लिख दें, अब तो फिर इतना जगह नहीं ना इसमें।
वा धातु से उण प्रत्यय हुआ, उनसे आप इसको युग आगम हुआ, युग का यह बचेगा, तो ये वायु शब्द सिद्ध हुआ।
यहाँ तक तो किसी को मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं,
नहीं।
हाँ जी, कोई समस्या नहीं ना आपको, आपने प्रथमर्ति तो पढ़ी है ना, तो यहाँ तक तो समस्या नहीं होगी, ठीक है।
फिर वायु संबोधन में इसको बनेगा वायु शब्द बनेगा,
कैसे बना वो भी बता दो संबोधन में, वैसे तो
वायु शब्द से सु आएगा संबोधन में
जी,
और इंग रस्वत संबुद्ध से ये सु हट जाएगा, इसका लोप हो जाएगा
जी,
फिर और यु को विभक्ति मान करके गुण हो जाएगा
जी, पहले गुण कर लो,
संबोधन से
हाँ जी,
तो इसका यु को
संबोधन
संबोधन
जैसे होगा, हाँ
वायु शब्द बना,
वायु बन गया, किसी को कोई समस्या, वा गति गंधन दाती वाति गच्छति जानाती थी, वायु ये इसका व्युत्पत्ति हो गई, ये इसमें, यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है, आगे चलिए।
तो वायु शब्द से आ गया, ये जो वायु है ये सामंत्रित से इसकी आमंत्रित संज्ञा हो जाएगी, आमंत्रित से जो शास्त्रीय आमंत्रित से जो है उससे इसको अधिदत्त हो जाएगा,
प्रत्यय स्वर दिखा सकते हैं,
प्रत्यय स्वर तो वायु शब्द है
जिनको प्रत्यय स्वर की संख्या,
अच्छा चलो वो भी दिखा लो,
इसके अंदर प्रत्यय स्वर अंतोदत्त हो जाएगा
जी,
और ये फिर अंतदत्त हो जाएगा, तो इसका प्रत्यय स्वर
जी,
और फिर जब आमंत्रित संज्ञा हो जाएगी तो ये वायु शब्द
ये हट जाएगा और वो हो जाएगा,
ये उदत्त हो जाएगा, ये अवदत्त हो जाएगा, प्राप्ति
जी,
जैसे मतलब कि आमंत्रित
है
तो वो हट जाएगा,
वो तो जो आ रहा है पहला कार्य तो निवृत्त होता ही है। विक्रम जी ध्यान दे लेना पूरा,
तो ये उदात और ये उदात
जी,
आगे बताइए, आ जाए तो यहाँ पर ये अतिंग है और ये तिंग है, तो अतिंग से उत्तर तिंग को सरोनिगत की प्राप्ति होती है।
सूत्र भी लिख दो एक बार इनको दिमाग में, तिंगंग तिंगा अष्टदेह लेके आए हैं, कल कहा था अष्टदेह में सूत्र भी देखें साथ में, कहां से कौन सा सूत्र लग रहा हो दिमाग में आना चाहिए,
ठीक।
तो
ये आया ही, ये निपात आदिदाता से, ये आदिदात है इसका
जी,
इससे उत्तर जो तिंग है इसको सरोनिगत प्राप्त होता है, ये सारा अनुदत्त हो जाएगा
जी
जी, तो ये वायु आया ही और ये उदात है और ये उदात है, तो उदात से आगे जो उदात है उसके जो बीच में अनुदात है उसको अनुदात दल प्राप्त हो
जी जी,
ये अनुदात दल हो
जी।
तो वायु और इसको फिर एच ओजा वाय से संधि होकर के वायु
वो भी करके दिखाई दो पूरी संधि भी है ना,
ये वायु ये ओ है
जी
और आगे आ है
जी।
तो एच ओजा वाय से ये ओ के स्थान पर अव होता है, ए के स्थान पर आयो होता है अय होता है, और ओ के स्थान पर आव और आई के स्थान पर
आव
आयो,
बस
इतने तो ओ को अव हो जाएगा
जी।
ये आव तो वाय वा ये शब्द बना।
अब इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ भी बता दियो साथ में।
तो हे अनंत बलवान परमेश्वर आप आइए
हमें प्राप्त हुई,
हाँ
तो हमारे हृदय में प्रकाशित हुई है, ये एक अर्थ हो गया। और व्याकरण से सामान्य अर्थ लगे तो गहन अर्थ हो गया कि हे वायो आया ही आ अस्माकम पुरस्तात, अर्वांग अर्थ है वो भी हमें घटा के चलना, आ इति अर्वांग अर्थ है, तो अस्माकम पुरस्तात आया ही आगच्छ प्राप्नु ही इति अर्थ। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या भी रुकी है जी जी जी, अरवाग अर्थे हमारे हमारी ओर आइए, हमारे अंदर आएंगे तभी तो हमारी ओर आएंगे, दूर जाएंगे तो दूर कैसे आएंगे, हमारे हृदय में प्रकाश अर्थात हमारे से समीपता कीजिए, समीपता तो है केवल अज्ञान में पर्दा पड़ा हुआ है।
अनुदात्तर का मतलब वही अनुदात्त का चिन्ह हट जाता है,
वो स्वरित नहीं होगा, अनुदात्त तो रहेगा, अनुदात्त तो रहेगा किंतु वो जो आगे उदात्त आ जाता है ना तो स्वरित नहीं रहता है, मतलब होगा ही नहीं स्वरित,
स्वरित नहीं होगा।
हाँ।
और ये यामी स्वरित हो गया स्वरित से, और हा का फिर एक सुरती मानी जाएगी।
हाँ ये तो एक सुरती स्वाभाविक है, ये तो अपने आप ही होती है, एक सुरती हो जाती है। तो यहाँ तक कोई समस्या मुझे नहीं लगता किसी को होगी, भाई रहनी नहीं चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं चंद्रगुप्त जी है ना, सूत्र बोलो। तो सूत्र अष्टाध्यायी वो भी सुनानी है भाई, अब अगर किसी को अष्टाध्यायी कमजोर है तो वो भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब ये तो मतलब पहली कक्षा की चीजें चल रही हैं अभी वैसे, चलिए यहाँ तक एक वार्ता पूरी होगी। हे अनंत गुण बल युक्त ईश्वर अस्मा हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, यहाँ तक एक वाक्य पूरा हो गया। अब दूसरा वाक्य देखिए, हाँ दर्शत है उसका विशेषण है वैसे।
तो
दर्शत ही में सोमा रंकीर्त एक वाक्य बना दीजिए, दर्शत तो वैसे उसी के साथ जोड़ के बता दीजिए।
तो दर्शत ये है दृश्य धातु से अदच कृत्य होगा, और अधिक तो दृश्यते इति दर्शत, दृष्टुम योग्य इति दर्शत, जो देखने योग्य है जानने योग्य है। तो दर्शत में अदच कृत्य हुआ तो चित्त से इसको अंतदत्त प्राप्त था, किंतु ये उसका विशेषण होने के कारण से इसका आष्टिक जो अमृतस्य है उससे ये सर्वनिगत हो जाएगा।
कोई समस्या बता देना जी, फिर ये कल कोई पूछेगा तो कल तो मैं पूछूंगा है ना, कल तो ऐसे पाठ बंद रहेगा परसों, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भले हमारा एक घंटा और लग जाए इसी में, पर ये दिमाग में विषय आना ही चाहिए। हाँ जी अपदाद, हाँ ऐसे आमंत्रित को निघात हो जाता है, और आमंत्रित कैसे है क्योंकि ये उसका विशेषण भी है, और पता कैसे लगा इसका विशेषण है क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं, हर पद का अपना एक स्वर है, क्रिया है तो निघात हो सकता है, तो इसमें जब स्वर नहीं दिखाई दिया तो क्या मानेंगे इसको, ये इसकी पहचान भी है कि इसको उसी का विशेषण और विशेष के रूप में माना जाए। और फिर हमारे पास महर्षि दयानंद जी का भाष्य भी है, हमें और कोई समस्या इसमें तो है नहीं।
वैसे स्वर अलग से अगर पद बना तो स्वर तो लगेगा
ही,
स्वर तो एक श्रुति कारण नहीं होगा, एक श्रुति स्वर तो उसमें है
नहीं, एक श्रुति स्वर तो है किंतु इसका कोई अचेतन तो दत्त होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ
तो
वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे पता लगा कि ये आमंत्रित है, आपने किस हेतु से जाना कि ये आमंत्रित है,
अगर ऐसा हेतु नहीं तो ऐसा कह सकते कि चित्त स्वर, जैसे चित्त स्वर प्राप्त
किससे प्राप्त था, सर्वानिघात का हेतु क्या है कि इस कारण से सर्वानिघात, तो तभी कह सकते हैं जब आप इसको विशेषण मानेंगे संबोधन में मानेंगे, तभी होगा। उसकी पहचान क्या, आपको पहचान भी तो करनी है कि कौन सा विशेष है। अभी तो मैंने बहुत कम चीजें बताई है। कैसे बनेगा वो तो बताइए। चितंत उदात हो रहा था और दर्शत इमे में पता है इमे वो है उदात अनुदात का जो है ना एक आदेश क्या होगा उदात होगा। तो इमे के एक को क्या होना चाहिए था और वह है क्या फिर ध्यान से देखा करो। तो चीजों को कैसे अभी तो वो भी हम चलाएंगे कि एक मंत्र के अर्थ करने में कितनी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी तो व्याकरण लगा रहे हैं। हाँ स्वर भी एक उसकी पहचान है। हाँ स्वर भी उसकी एक पहचान है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए जी। इतना तो कर ही लेंगे आप तो अगर ऐसी सिद्धि ऐसी भी सिद्धि लगाने की अपेक्षा है क्या ना इतनी तो मत लगाओ। इनको भी कुछ करने दो सीधा ही बता दो। अगर इतनी भी किसी की सिद्धि कमजोर है तो फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते ज्यादा।
जी जो शब्द अनुदात सुपितो से जी अनुदात होगा
जी अनुदात थोड़ी है तो उदात है। इमे क्या है उदात है मंत्र नहीं देख रहे। उदात कार अनुदात का एक आदेश क्या होता है उदाती होता है और यहाँ तो जससी वाला हुआ है। चलो ये फिसो अंत उदात से था दोनों का एक आदेश हुआ तो वो उदाती रह गया तो ये अंत उदात है। इसकी सिद्धि पूरी बता दो।
अलम अलम
पहले तो भूषण लम से इसकी क्या करो गति संज्ञा करो कुगति प्रादेय से समास करो फिर इसकी समास से जब अंतोदात प्राप्त हुआ उसको रोकने के लिए तत्पुरुष तुल्य अर्थ है जो वाला सूत्र लगा।
तत्पुरुष तुल्य अर्थ कैसे लगेगा इसमें
क्यों नहीं लगेगा
गति संज्ञा समास नहीं गति संज्ञा
अव्यय संज्ञा हुई इसकी नहीं हुई
अव्यय संज्ञा
हाँ निपात की अव्यय संज्ञा हो जाती है नहीं होती। जब इसकी अव्यय संज्ञा हो गई तो अव्यय का स्वर प्राप्त होगा नहीं होगा। तो जब ये अव्यय का अव्यय माना गया तो अव्यय का पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ। जब प्राप्त हुआ तो उसको रोकने के लिए फिर क्या करें वैसे तो काम वहां से चल गया था किंतु उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फिर एक गति वाला इसका अपवाद है वो बांधेगा फिर क्योंकि वो अंतोदात प्राप्त हुआ है अंत वाला हो रहा है उत्तर पद को प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ गति कारकों पर पदार्थ की तो देखा आदि को जा रहा है तो गति तो व्यवधान रहित जो गति है उससे पूर्व पद का प्रकृति स्वर होता है तो निपाता तो ऐसे घटे हुए जी ठीक। तो इमे सोमा अरंकृता वो अर्थ भी बता दो यहाँ तक क्या अर्थ घटा।
तो जो संसारिक ये जो संसारिक सोमा करते संसारिक पदार्थ वो उससे हमें सुशोभित कीजिए।
ये जो सांसारिक पदार्थ जो ईश्वर ने उत्पन्न किए हुए हैं सुशोभित हैं तो इनको तो अभी तो रक्षा करनी अभी तो बनाए हैं तो हे वायव आयाहि दर्शत हे दर्शत वायु आयाहि इमे सोमा अरंकृता जो दर्शनीय जो सुशोभित पदार्थ हैं ईश्वर के द्वारा जो बनाए हुए हैं वो सुशोभित हैं। हाँ, तो उनको क्या करें फिर? तेसाम पाही श्रुदि हवम। श्रीधर जी बैठ रहा दिमाग में, मैं कमी नहीं रहनी चाहिए। देखो पाठ सबसे पूछा जाएगा क्योंकि ये विषय ऐसा है कि पहली बार आप लोग भी लगा रहे हैं और मेहनत एक बार कर ली तो आगे लगभग ऐसे ही लगता है सारा कार्य। एक दिन हमारा ज्यादा लगे, दो दिन लगे, उसकी बात नहीं, दिमाग में चीजें आनी चाहिए।
तो
धीरे 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 बोलो। यहाँ तक तेसाम पाही समझ में आया? तेसाम पाही नाम है तान पाही। आप उनकी रक्षा कीजिए, जो पदार्थ आपने बनाया है उनकी रक्षा कीजिए। तो हमें भी उन्होंने बनाया तो हमारी भी रक्षा कीजिए।
वो
एक ही है ना, और वैसे व्याकरण से लगाओ तो इसका महर्षि ने निर्वचन भी उन आदि में किया है। तेजी तनी यजिभ्यो डित, तो इसको डित मान लिया है और अति प्रत्यय मान लिया है तो तत् शब्द बन गया है, तो एक ही है इसमें, तो वो प्रत्यय का ईश्वर है। क्योंकि वो तो डित होने से जो धातु थी वो तो लुप्त हो गया, डित भस्या भी टेर लोप है, वो ही रह गया, तो वो ही है। और बाकी फीसे से भी कोई बात नहीं इसमें।
तो श्रुदी हवन,
हाँ,
तो श्रुदी जो है श्रु धातु,
इसमें पूरा घटा के बताओ कि अब ये ध्यान देने की बात है, मंत्रों में बहुत बार आएगा कि पाही और श्रुधि, वहां तिंग से उत्तर, अतिंग से उत्तर तिंग को क्या हुआ था? पाही को निघात हुआ था, किंतु यहाँ क्यों नहीं हुआ पाही से उत्तर श्रुधि को? हाँ, वहां सूत्र क्या कहता है कि अतिंग यानी सुबंत से उत्तर हो तभी होगा, क्योंकि ये तो दोनों ही तिगंत हैं, तो इससे उत्तर तो नहीं होगा। फिर इसको श्रुधि को अंत उदात्त क्यों हुआ? क्योंकि अनुदात्त सुपित, ये तो सिप था, हाँ, तो सेर्य अपिच्य, सी को ही हुआ वो अपित हुआ, तो अपित होने से क्या हुआ? ये सूत्र नहीं लगा, प्रत्यय स्वर लग गया। और इसमें धी कैसे हुआ वो भी बताओ, ही को धी कैसे हुआ? अगला सूत्र बोलो, श्रु श्री क्री प्री वृभ्यश छंद सी, ये अगला सूत्र है, हु जल व्यो हेर दी से अगला सूत्र है। किससे बना सकते हैं? चलो हाँ,
तो वैसे बनेंगे तो भाई उपसर्ग से
जी
अप्रत्यय
जी,
तो
आह्वानम एव हवम बुलाना, तो अस्माकम आह्वानम हवम श्रुधि श्रृणु ही, हमारी इस बात को आप सुनो। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो मतलब 20 मिनट में जो चीजें पल पूरे दिन समझ में नहीं आई थी दोबारा समझाने से आ गई ना, ये नहीं आ गई? संप्रसारण हो जाएगा आचार्य जी जी, बहुलम छंदसी से संप्रसारण हो जाएगा। बहुलम छंदसी बहुलम छंद से भी करते
हैं
वो भी है, वो भी है, और नहीं तो बहुलम छंद से पढ़ाई हुआ है उसी प्रकरण में। हाँ, और बाकी सीधा तो हो दाना दानियो, इससे भी बनाया हुआ है और उससे भी, दोनों से बनता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ सभी को एक मंत्र में व्याकरण कैसे लगता है, कैसे क्रियाओं पे ध्यान दिया जाता है, कैसे स्वर लगता है, कैसे निर्वचन होते हैं। तो किसी को मुझे नहीं लगता कोई समस्या हो, हा? हाँ जी ठीक है। हाँ पहले से था आप, हाथ तो नहीं उठाया था आपने, अच्छा तो उठा रहा था और आधा अधूरा था। अभिषेक जी आ गया, पूरा हो गया। हाँ जी ओमदेव जी हो गया। तो अब एक बार आप आइए, कुछ चीजें लोगों को शंका हो तो बताइए, तभी तो पता लगेगा आया नहीं आया। वाय वह आया ही तक समझा के बताइए, इतना ही पूरा मंत्र की अपेक्षा नहीं। अभिषेक जी आगे तैयार रहे, पता तो लगेगा ना आया नहीं आया। अगर ये ऐसे नहीं समझा जाता तो निरुक्त के बाद भी ऐसे ही रहता या नहीं? और तीन चार दिन में ये विद्या आ गई। अब आप अपने मंत्रों को देखेंगे तो उसमें आपको स्वर ही दिखेंगे कि ये कैसे घटा, दिमाग वही काम करेगा, इसमें कौन सा सूत्र लग सकता है। और ये अभ्यास कर लिया तो हमेशा के लिए पक्की चीजें हो जाती है, फिर सोचना नहीं पड़ता।
मंत्र देखने से बड़े स्वर दिखेंगे।
हाँ वही होगा आचार्य जी, देखना निर्वचन भी दिखेंगे। हाँ जी 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 सूत्र भी बोलते रहो करो। आतो युग चिणकृतो युग चिणकृतो और क्रीवा पा जी मी साधि अदौन, ये उनादि का पहला ही सूत्र है जी। जी प्रत्यप्रश्च आदिदत्तश्च, हाँ प्रत्यप्रश्च ये हो गया, अंतोदात हो गया जी जी जी। नहीं अब तो वो तो बना दो, पहले वायु बनाओ ना, ओकार दिखाओ, पहले इसकी सिद्धि पूरी कर लो। उकार को ओकार कर दो, कैसे होगा वो, और स्वर लगा दो इसमें आद्युदात कैसे होगा। बस सूत्री बना दो, सूत्र ये सब जानते ही हैं। संबोधने च, संबोधने क्यों नहीं होगा, संबोधने क्या कहता है, है?
वो तो
हरस्य गुण है, आगे कौन सा सूत्र है, संबोधन चाहिए। चलो हाँ संबुद्ध वही है, संबुद्ध उच्च है ठीक है जी। इन ग्रस्वा संबुद्धे से अब क्या कर दो इसका, हाँ तो अब क्या यहाँ से क्या निकला, हाँ ठीक है। और आगे दोनों में और बता दो क्या हुआ जल्दी से। आदिदात ये कैसे हो गया, ये शेरिय पीछे वाला कहाँ है, ये तो तिंगंग तिंगे लगाया ना, अब तो बाद में तो वही लगा। हाँ ये तो इतनी लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं, इसके बाद में बता दो क्या है जी। तो यहाँ तक अर्थ क्या हुआ,
हे वायु हे परमेश्वर आ याही इधर याही हमें प्राप्त।
तो यहाँ तक आगे समझो। अभिषेक जी अगला श्रुति होम का लगाइए आप जल्दी से।
जी जी
जी ही को धी किससे हुआ? श्रु श्री कृपि वृद्धेश छंद से जी जी अनुदत्त सी पिताऊ से ये हो गया नहीं शुरू में तो लगेगा पर वो शेरिया पीछे उसको रोक देगा प्राप्ति होगी। हाँ तो प्रत्यय स्वर से हो गया दीर्घ किससे हुआ है श्रुति निशामोभि दृश्य तो और हवम कैसे बना जी जी
तथा
किससे हुआ प्रत्यय
संप्रसारण और संप्रसारण से एकादश हो गया एकादश होने के बाद इसको गुण भूको हो अवादिश अब ये आदिदात हो जाएगा।
आदिदात किससे हो गया?
आदिदात होगा अप्रत्यय किस है तो अनदत्त प्रत्यय
धातु का ईश्वर रहा। ठीक है ये हो गया। हाँ जी वेदभूषण जी हैं अभी तो आप कह रहे थे पूरा समझ में आ गया आपने हामी भरी है ना ऐसे कैसे काम चलेगा। जयदेव जी आगे चलो नहीं बचे अभी बीच में दर्शतई में घटना चाहिए ना तभी तो पता लगेगा। हाँ कीजिए दोनों में
दृश्य धातु में और इसमें अटैच हो गया
जी
और गुण होकर के घर इसमें चितो अंत धाता से अंत धात
जी
और
भाई दर्शत पहले पूरा लिखा है दर्शत में वेद में कोई स्वर नहीं है दर्शत इमे मिलके अनुदात है
मैं कह रहा
हूँ तुम और मैं एक जैसे हैं मैं पढ़ के भूल
गया हूँ ये पढ़ा
नहीं। नहीं आचार्य जी आप तो अष्टाध्यायी तो याद है ना आपको पूरी
थोड़ी बहुत है ज्यादा नहीं।
लगाओ भाई अभी तो आपने कहा तो समझ में आ गया तभी तो हम कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया तो हमें तो तभी पता लगेगा जब आप करके
दिखाओगे
कि आया नहीं आया। घबरा गए घबराने की कोई जरूरत नहीं यहाँ सब अपने भाई हैं इनसे क्यों घबरा रहे भी ऐसे जैसे आप हम घटा दो। चलो भाई कल बता देना ये घबरा गए तो मैदान में आके और कौन बचे हैं। हाँ जी राम किशोर जी आइए विक्रम जी भी आएंगे इसके बाद कल की प्रतीक्षा मत करो कल तो रविवार है पाठ बंद रहेगा। दर्शत ही मेरे को घटाइए अब ध्यान से देख लो जयदेव जी ऐसे नहीं चलेगा काम। अच्छा पहले तो मूल स्वर लगाइए ना इसको बाद में लगेगा तो
वैसे पहले से अतच प्रत्यय किया तो
जी जी
फिर उसका विशेषण होने से आनंद
जी
और इमें है फिर अंतोदात से
जी
अंतोदात है और ये अनुदात फिर दोनों
तो अनुदात का एकादेश दोनों का अनुदाती रहेगा स्वाभाविक है तो हो गया दर्शत में सोमारंकृता और बचा हुआ है कौन बचे हैं बलदेव जी आप तो कह रहे थे समझ में आ गया अभी ये भी एक विशेष बात वो कहाँ गए भैरूलाल जी बीच में से चले गए क्या। हाँ जी आप समझाएंगे कुछ नहीं
तो नहीं पढ़ा हुआ
श्रीधर जी अभी तो कह रहे थे समझ में आ गया, लगाओ सोमारं कीर्ता दो ही तो बचे हैं। श्रीधर जी पे सबसे कठिन आ गया वैसे, लगा देंगे। चलिए सोमा बन गया, बहुवचन से सोमा हो गया, बाकी सोमा बनेगा। हाँ ठीक है ठीक है, वो इतना होगा जी। मित से नहीं, नित से, मकार तो इत थोड़े ही, इसमें नकार इत है। नी नित्या देर नित्यम से, हाँ तुमसे आदि उदात हो गए। हाँ
तो ये अनुदात हो गए।
हाँ
आरंभ करता भूषण अलम से, अलम का गति से न्याय
जी।
तो ये अव्यय होने से इसका प्रत्यय प्रकृति से
नहीं, पहले तो गति संज्ञा होगी, फिर कुगति प्रादेय लगेगा, समासस्य से अंत उदात्त होगा,
फिर उसको अपवाद जो है तत्पुरुष
से पूर्व पद का प्रकृति। हाँ उसका अपवाद क्या है? गति कारको पर पदार्थ की, तो उत्तर पद का आदि उदात्त प्राप्त हुआ, उसका भी अपवाद क्या है? गति, तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो गया, तो निपाता आदि उदात्त। ठीक है जी, तो ठीक है, तो मतलब लगभग 50-60% उन्नति है। कुछ कल सुनाएंगे, कल तो नहीं परसों पाठ चलेगा, पर सुनाना है, अवकाश किसी को भी नहीं है कि नहीं सुनाएंगे। गति होनी है, अभी घबरा रहे हैं कल को, भाई साइकिल चलाते हैं ना तब भी गिरते हैं, और फिर एक दिन हाथ छोड़ के चलाते हैं। कार वालों का, विमान वालों का भी यही हाल है, तो यहाँ भी यही समझ लो आप थोड़ा, और प्रयास जारी रहे तो। वो दूसरा मंत्र लिख दीजिए, कहाँ है गौतम जी, वो जो मंत्र चलेगा पहले वाला वो लिखिए। लिखिए वो मंत्र, लिखिए मूल ऋग्वेद निकाल लें, 1:19:1 है शायद। मूल ऋग्वेद में 1:19:1 का अर्थ है कि पहला मंडल है, 19वां सूक्त है, पहला मंत्र है। ये कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जी। ये भी एक बात है, ये देखो अच्छी बात पूछी इन्होंने, ये अगर महर्षि दयानंद का भाष्य हमारे पास नहीं होता तो हमारे किस आधार पे करते? अभी तो ऐसी कल्पना ही मत करो क्योंकि भाष्य है, और यदि है, अगर आप ऐसा मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप वैयाकरण तो हैं, तो इसका अर्थ निकल जाएगा, है ना। परमात्मा निरुक्त जैसे ही पढ़ेंगे, निरुक्त के बाद का ही विषय, वैसे पूरा निरुक्त हो जाएगा, देवता कांड हो जाएगा। तो एक ही आत्मा है, बहुधा स्तुति है, तो उसके अनेक प्रकार से स्तुति है, तो परमात्मा परक लगभग हर मंत्र का अर्थ हो जाता है। तो जब हमने वायु के गुणों को लगभग हम जानते हैं, दर्शन पढ़ के जानते हैं, वेद पढ़ने का तो मतलब पहले सारे शास्त्रों को पढ़ के आप आए हुए हैं ना। जब आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, ब्राह्मण पढ़ लिया, निरुक्त पढ़ लिया, आयुर्वेद भी पढ़ ली, आयुर्वेद तो खैर बाद में पढ़ते हैं, तो दर्शन पढ़ चुके हैं, व्याकरण पढ़ चुके हैं, निरुक्त पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण पढ़ चुके हैं, तो आपको वायु के स्वरूप का ज्ञान है कि वायु क्या है। व्याकरण से आपको आ गया, निरुक्त से आपको कुछ स्वरूप आ गया, ब्राह्मण से आपको पूरा स्वरूप आ गया कि वायु कहाँ रहती है, लगभग 100 से ज्यादा अर्थ हैं। तो जब आपको ये सारे अर्थ आ गए तो संबंध मात्र जोड़ना है, यही मेधा का काम है, या मेधाम देव गणा पितरश्च उपासते। मेधा यही काम करती है कि वो संबंध चीजों का जोड़ लेती है, पर वो कब जोड़ेगी? पहले उसके अंदर आधार चाहिए, आधार है शास्त्र अध्ययन, तो इसका अर्थ आराम से हो जाएगा।
अगर इसमें वेद में कोई पद अधिक कितने लिख दिया तो हमें पता लग जाएगा इसका?
वेद में पद लिख दिया, वेद में तो
मंत्र बना दिया,
मंत्र तो है वेद का ही, लेकिन उसमें कुछ पद जोड़ दिए।
जो वेद की भाषा है ना वो बनाना संभव नहीं है एक प्रकार से। और फिर क्योंकि जब आप चीजों को देखते हैं, जैसे मनुस्मृति में मिलावट होगी उसमें से दूर कर दी गई और चीजों में हुई, तो ये इसमें तो जो पढ़ा लिखा होगा इसमें से भी कर लेगा। वैसे किसी की आज तक प्राय इसमें हिम्मत नहीं हुई मिलावट करने की। तो हम मुख्य विषय पे आ जाते हैं, वो तो बाद का विषय है। तो इसमें अभी आपने लगभग बहुत लोगों की तैयारी हो गई है, कुछ जानते तो हैं पर घबरा के कारण नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पहली बार ही बोर्ड पे आने की हिम्मत नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, तो लगभग आप देखें कि डेढ़ दिन में ही, डेढ़ पाठ में ही एक मंत्र में आप व्याकरण लगाने लगे, और छह महीने में क्या स्थिति होगी। आज कक्षा का पांचवा दिन है, चौथा पांचवा होना चाहिए, दो तारीख को चला था, तो आज कक्षा का पांचवा दिन है। पांचवे दिन में आपको क्या उन्नति दिख रही है, लग रहा है कुछ वेद आ जाएंगे समझ में, विश्वास तो हुआ ना। और जब छह महीने पढ़ेंगे और उसके बाद ब्राह्मण पढ़ेंगे, स्रोत सूत्र पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, तो क्या स्थिति होगी आप खुद ही लगा लें कि विद्या क्या कहां व्यक्ति को ले जाती है। बात मंत्रों की चल रही थी, थोड़ी मंत्र पे भी चर्चा कर लें। हमने ये एक मंत्र देखा, इसका अर्थ देखा, हमें कुछ जान हुआ कि परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होता है, हो सकता है, हुआ है, और ये उन्होंने ये पदार्थ बनाए हैं, वो हमें भी उसने बनाए तो हमारी रक्षा करे, ये इस मंत्र में प्रार्थना की गई। कुछ वैज्ञानिक अर्थ भी खोलने का अधिदैविक प्रयास कल किया गया। इसमें एक थोड़ा सा अर्थ और है शतपथ के अनुसार, उसको करके फिर आगे पाठ प्रारंभ करेंगे। इसमें सविता और वायु का संबंध है। उन्होंने कहा शतपथकार ने कि सविता वही वायु, वायु जो है वो सविता है।
सविता अपनी कल्पना कीजिए,
मैंने कल्पना नहीं की, शतपथ ब्राह्मण में मैं अपनी तरफ से कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं। जो ये वाक्य हैं या तो शतपथ ब्राह्मण के, हम तो केवल संबंध मात्र कैसे जुड़ सकता है, क्योंकि वो दिमाग में सारे संबंध पहले से उपस्थित हैं पढ़ा होने के कारण, तो संबंध कैसे जुड़ सकता है, मैं तो केवल इतना संबंध मात्र जोड़ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, शतपथ में इसका आया है कि सविता जो है वो वायु का एक अर्थ, सविता यानी सूर्य की एक विशेष प्रकार की शक्ति। सविता वैसे सूर्य का ही पर्यायवाची है, पर वो क्योंकि उसके काल का भी निश्चय आगे निरूपकार ने किया हुआ है,
सविता क्यों माना वो समझाए।
हाँ वही है। तो इसमें अब अर्थ आ गया, वायव आया ही दर्शता इमे सोमा अरंकृता, हे सविता आया ही, आइए इमे सोमा अरंकृता, ये जो सोम है आप है तत्व है ये अलंकृत किया हो गया है, तो तेसाम पाही उनका पान करो और हमारे आह्वान को सुनो, हमारी रक्षा करो। तो सविता यानी सूर्य, सूर्य की एक शक्ति यानी जब वो निकलता है उसके आसपास का थोड़ा पहले थोड़ा बाद का काल सविता का माना गया है, कुछ आसपास का। तो अब उस काल में जो सूर्य की रश्मियां आ रही हैं या वहां जो सूर्य में क्रियाएं घटित हो रही, घटित तो हो 24 घंटे हो रही हैं, किंतु क्योंकि पृथ्वी का घूमने का चक्र है उसके कारण हमें वो सीधी नहीं पड़ रही है, उस काल में कम पड़ रही है। तो जब ये सविता जो है वायु हुआ तो इसका आदि देविक यानी सूर्य की एक घटना की चर्चा यहाँ हो रही है कि सूर्य में क्या घटना घटित हो रही है वो बता रहे हैं। मैंने कहा कि आप है वही सोम है, तो आप है तत्व सूर्य में है, इसमें हमारा प्रमाण क्या, महर्षि दयानंद का यजुर्वेद का भाष्य हमारे पास प्रमाण है। अपाम रसम उद्वैसम सूर्य संतम समाहितम अपाम रसस्य यो रस तम वो गृणामि उत्तमम। तो अपाम रसम आप नाम का एक तत्व है, उसका एक रस है, उसका एक सार है। अपाम रसम उद्वैसम महर्षि ने अर्थ किया, उद्वैसम उत्कृष्ट आयु प्राप्यते, जिससे हमें उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है वो उद्वैसम है। सूर्य संतम समाहितम सूर्य के अंदर विद्यमान होता हुआ वो बहुत अधिक अच्छी प्रकार से भरा हुआ है, सम्यक्तया आसमंता धृतम। अपाम रसस्य यो रस है, रस का जो रस है यानी जो सार का जो सार है मैं उसको गृणामि उत्तमम। तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, मतलब वो यहाँ रश्मियों के रूप में हमारे पास आ रहा है, हम सब पौधे हैं, मनुष्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो उसी का ग्रहण कर रहे हैं। तो सविता का अर्थ सूर्य हुआ, सूर्य में ये सोम जो है उसका ये भरे हुए हैं, और ये सविता उसका जो घटना हो रही है उसका पान करता है, उसका घटना के कारण उसका सेवन करता है, और वो ही पुनः एक घटना और होती है, रस का रस बनता है, वो यहाँ पृथ्वी पे आ रहा है। तो ये सूर्य की एक घटना अर्थात सूर्य में प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्या घटित हो रहा है, ये भी ऐसा शतपथकार ने एक संबंध किया हुआ है। शतपथकार ने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने तो ये बताया कि वायु वही सविता, और वो संबंध क्योंकि सोम आपतर वो सूर्य में रहता है, महर्षि का भाष्य भी हमारे पास है, और तो दिमाग संबंध जोड़ता है, तो एक ये संबंध ऐसे भी हो सकता है कि सूर्य की घटना के बारे में बताइए। आधिदेविक अर्थ जिसको वैज्ञानिक अर्थ कहते हैं वो होगा, आध्यात्मिक अर्थ महर्षि दयानंद ने दोनों ही अर्थ किए हैं, आधि भौतिक भी किया कि वायु जिसके कारण हम प्राण ले रहे हैं, बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि मंत्र जैसे आदरणीय आचार्य जी ने भी कहा कि निरुक्त पढ़ के और आगे ब्राह्मणों को पढ़ के बुद्धि का विकास हो जाता है, संबंध घटित होने लगते हैं, चीजें बंधी नहीं रहती हैं, अनंत आकाश मिल जाता है अगर वो प्रमाण से घटित हो रहा। अनंत आकाश का अर्थ ये नहीं है कि अपनी मर्जी से अर्थ कर लिया जाए, उसका कोई ना कोई प्रमाण आधार होना चाहिए। तो अनेक प्रकार का इसी मंत्र को चाहे तो यदि फिर मन है वही सविता, और इसमें थोड़ा आगे जाए क्योंकि वायु सविता है तो मन उसका एक पर्यायवाची सविता भी है, अब वो उसका पर्यायवाची है तो इसका मतलब यहाँ मन में भी ये क्रिया घटित हो रही है, तो मन के लिए सोम अलंकृत है और उनको वो पान करे और हमारी रक्षा करे, तो मन का सोम क्या है, सत्व ही है, वो तभी हमारी रक्षा कर पाएगा, सारा कर पाएगा। और भी इसमें आगे संबंध जुड़ सकते हैं अगर अध्ययन थोड़ा अच्छा हो तो। ये शतपथकार ने सविता का अर्थ मन भी माना,
सविता माना तो फिर उसमें आप स्वामी जान के बाद से फिर उसमें आप हमसे उसमें वो रस मानेंगे,
दिमाग में हमारे अंदर जो है ना ओज पूरे शरीर में भी है और अष्ट बिंदु परिमित भी है और दिमाग में अधिकतम है, तो वो सोम का ही रूप है, जो घटित सूर्य में घटना हो रही है वो यज्ञ कुंड में हो रही है, जो सूर्य में घटना तो सूर्यम वही अग्निहोत्रम, ये भी वचन ब्राह्मण ग्रंथ का, सूर्य अग्निहोत्र है, तो जैसे यहाँ घटना हो रही है ये उसी का प्रतिनिधि है। वो तो खैर हम ज्यादा लंबी चर्चा पे नहीं जाएंगे, यथा पिंडे तथा ब्राह्मणे तथा देव यजन्याम, देव यजनी में भी वही घटित हो रहा है जो सब कुछ हो रहा है, उसी को समझने के लिए सारा है, हमारा शरीर भी उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, तो सब कुछ हम एक दूसरे से पूरा जुड़े हुए हैं, जो घटना अंतरिक्ष में हो रही है या हुई है, सृष्टि का निर्माण वही सोम याग के माध्यम से, अग्निहोत्र अग्निहोत्र में क्या हो रहा है, ये सोम की आहुति हम दे रहे हैं यहाँ, तो जैसे यहाँ लपटे उठ रही है वहां भी लपटे उठ रही है, उसी का प्रतिनिधि ये है। तो ये तो लंबी चर्चा,
मतलब अर्थ क्या लेंगे फिर इसमें, सूर्य पर अर्थ लेंगे और मन पर,
मन तो फिर सविता हुआ, सुयति प्रेरियति जो है वो सविता है, तो मन भी इंद्रियों को प्रेरित कर रहा है, प्राण को प्रेरित कर रहा है आत्मा के द्वारा, तो उसमें जो उसका सोम है, उसकी जो शक्ति है जिससे उसको शक्ति मिलती है, उसका सोम हो गया, सूर्य को शक्ति किससे मिल रही है, सोम से मिल रही है, तो सोमारंकृता, तो इस मन के लिए भी जितने भी पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं से ऊर्जा ले रहे हैं, बिना ऊर्जा के कोई पदार्थ जीवित नहीं रह सकता, तो मन का ऊर्जा का कारण क्या है, मन पूर्ण रूप से, और फिर व्यक्ति तनाव में आ जाता है, पागल हो जाता है, ऊर्जा क्यों कम हो जाती है, तो ये सारी बातें हैं, उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं, तो ऐसे भी घट सकता है, मैंने तो उपलक्षण मात्र बताया
जी।
सूर्य में भरा हुआ है, सूर्य संतम समाहितम, भरा हुआ है आप है तत्व जो, और माना जाता है उसका एक केंद्र भी है, वो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार द्यूलोक आदित्य लोक के पास में ही है और उसके अंदर भरा भी हुआ है।
यहाँ से तो नहीं खींचता पृथ्वी से,
ये तो आचार्य जी बताएंगे कि यहाँ से कैसा
वो दक्षिणायन उत्तरायण
के चक्कर
हाँ भाई, वो तो मैं तो केवल लक्षण ये उपलक्षण में कि ऐसे भी घट सकता है, ये तो पार्ट वहाँ नहीं जा रहा ना, अभी जब शतपथ चलेगा वहाँ का विषय है, या हम सीधा मेन वेद चलाएंगे तब तो हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे पार्ट को, क्योंकि निरुक्त हो चुका होगा, ब्राह्मण हो चुका होगा, सारा होगा, तो फिर तो जितनी भी घटनाएं घटित मंत्र में हो सकती है, चाहे हमारा एक साल लगे दो साल लगे, फिर हम किसी भी मंत्र को ना व्याकरण के बिना छोड़ेंगे, ना निरुक्त के, ना ब्राह्मण के, आयुर्वेद भी उसमें घटित हो आयुर्वेद भी घटाएंगे, ज्योतिष घटित हो रहा ज्योतिष भी घटाएंगे। पर अभी तो क्योंकि अगर ऐसे हर मंत्र में हम चलने लगे, मैं तो प्रारंभ के लिए कि भाई ऐसा आप लोगों की रुचि बने कि मंत्र ऐसे भी जानने का एक तरीका है, बाकी हर मंत्र में यदि हम ऐसे घटाएंगे तो एक मंत्र से ज्यादा शायद रोज नहीं हो पाएगा, तो ये तो दो तीन साल निरुक्त लगे। और अभी तो आचार्य जी कल कह भी रहे थे कि आपने घटना कहाँ से घटा दी, हमें तो पता ही नहीं लगा कि मंत्र में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो हम उस पर अब ज्यादा नहीं चलेंगे, कुछ मंत्र में और व्याकरण लगाते हैं। तो मंत्र की बात चल रही थी, मंत्र क्या है, मंत्रो मनना, तीन रूप कारण का मनन करने से मंत्र है। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो ये आपके लिए कुछ चीजों को उपलब्ध कराएगा। आपने पारायण कर लिया, विचार किया, नहीं पारायण कब होता है, जब व्यक्ति को उस मंत्र के जानने का सामर्थ्य नहीं होता। सामर्थ्य कौन पैदा करता है, निरुक्त करता है, व्याकरण करता है, ब्राह्मण करता है, ज्योतिष करता है, कर्मकांड बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि कर्मकांड उन्हीं घटनाओं के बारे में बता रहा है जो घटनाएं अंतरिक्ष में हो रही हैं, हो चुकी हैं। ये नित्य, ये कृत्रिम यज्ञ है जो हम करते हैं, किंतु ये कृत्रिम यज्ञ नित्य यज्ञ को सुरक्षित रखता है, जो सूर्य चंद्रमा वायु ये जो कर रही है, वायु चंद्रमा वैध्वर्यु अग्निर्वय होता राशित, वो जब संकल्प पाठ करते हैं तो होता अग्नि है, तो जैसे यहाँ अग्नि है ऐसे देवताओं का आह्वान करने वाला, उनको चीजें देने वाला अग्नि है। चंद्रमा अध्वर्य, जो अध्वर्यु यज्ञ में क्रिया करता है वही चंद्रमा इस ब्रह्मांड में कर रहा है, वो लंबी चर्चा हो जाएगी। तो मंत्रो मननात, मंत्र मनन करने से है, तो मनन मंत्र में कैसे करें, मन व बोधने और मन जाने दो ही धातु हैं, तो मन्यते जायते पदार्थानाम तत्वानि अनेनेति मंत्र, जिससे पदार्थों के तत्वों को जाना जाता है। तो मनन क्या है, मननात मनुष्येति आहु, मनन से ही मनुष्य है, मतलब विचार। विचार क्या, जो आचार्य जी ने एक दिन बात कही थी कि जब यास, जब ऋषियों का उच्छेद होने लगा तो कोनो ऋषिर भविष्यति स एष तर्क ऋषिं प्रायश्चित, तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, ऋषि ने क्या कहा, ब्राह्मणकार ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ऐसा लेके जो विचार किया जाता है वो है तर्क। तर्क को ऋषि कहा है, तो वो मनन वहां से प्रारंभ होता है, पर योग्यता वैसी होगी तभी होगा, अन्यथा सामान्य अर्थ हो जाएगा, सामान्य उपलब्धि होगी, सामान्य जीवन होगा और सामान्य ही मरण भी होगा, क्योंकि कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे हमें कोई याद रखे, तो सामान्य नहीं होना चाहिए। वेद ये कह रहा है सूर्य भ्राजिष्ठ है, भ्राजिष्ठ है तुम देवेशु असि, भ्राजिष्ठ है मनुष्येशु भूयसम, ये आर्यों की प्रार्थना है। हे सूर्य, जैसे आप सभी देवताओं में तेजस्वी हैं ऐसे ही मैं मनुष्यों में हो जाऊं, तो कैसे बनेंगे आप, तो देव कैसे है तेजस्वी, नक्तम ददरी से कुहचित दिवेयु, ये भी मंत्र है कि तारे रात में तो दिखाई देते हैं, दिन में कहां चले जाते हैं, दिन में तारे हैं किंतु सूर्य के प्रकाश में ओझल हो गए उनके तेज के सामने। तो एक विषय में हर व्यक्ति को लगभग, जो गुरुकुल वाले खासकर उनको तो वहां बैठना चाहिए, क्योंकि आप सामान्य नहीं है। एक विषय में तो ऐसा कार्य करें कि दुनिया आने वाली पीढ़ी भी, और ईश्वर की आज्ञा है, प्रार्थना झूठी नहीं होनी चाहिए ना, अगर आप ऐसा नहीं बैठेंगे तो मंत्र का उच्चारण मात्र रह जाएगा। तो ऐसा काम करें, वो काम कैसे होगा, जब आप इन गहन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, अपने जीवन और व्यवहार में उतारेंगे और समाज राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। तो वेद पढ़ना मंत्रो मननात। दूसरा पवित्रम पुनाते, मंत्र पवित्र भी है तो पवित्रम पुनाते, पवित्र शब्द कैसे बना कौन बताएंगे, तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के तीन चार सूत्र पहले। हाँ, तो उसमें जो है प्रत्यय जो हुआ करण कारक में हुआ, ध्यान देने की बात है, वो भाव में प्रत्यय वहां नहीं है, करण कारक में प्रत्यय, करण में और भाव में प्रत्यय आने से कितना अंतर आ जाता है अर्थ में। पवित्रम पवनम पवित्रम है ना, पूतम पवित्रम, किंतु यदि आप करेंगे पुनाति अनेनैति पवित्रम, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को पवित्र करता है, पवित्रता का साधन, तो जल पवित्र है, आपका जल से क्या संबंध है, पवित्र होता रहे, किंतु जब आप उसको मानेंगे कि ये पवित्र करने वाला है तो आप उसके पास जाएंगे। तो पवित्रम पुनाते मंत्र है, पवित्रम उच्यते, मंत्र को भी पवित्र कहा है। तो व्यक्ति से अपने आप को पवित्र करता है। अपवित्रता क्या है? तीन ही तत्व हैं, वो हमेशा ध्यान रखने की बात है, सत्व, रजस और तमस। अपवित्रता कहाँ से आती है? रजस और तमस के बढ़ने के। वायु पित्तम कफश्च उक्तः शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्ट रजश्च तमस एव च। ये चरक का है। रजस और तमस बढ़ने से मानसिक समस्या आती है, और जिसको मानसिक समस्या है सत्व कम हो जाएगा। सत्व कम होने से क्या होगा? ये समस्या बढ़ेगी जो भी बताई गई। तो पवित्रता नहीं बचेगी, यानी आसुरी तत्व आ जाएंगे और देव तत्व समाप्त हो जाएंगे। तो मंत्र पवित्र भी है। आप देखेंगे 6 महीने के अंदर कि आपके अंदर कितनी पवित्रता है। इसका अर्थ ये है कि आपको जैसे जैसे मंत्रों में जो सूचनाएं मिलेंगी, जो लगे उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करना। जब आपको पता लग गया है कि भाई ईर्ष्या द्वेष क्रोध, नियमों का पालन न करना, संस्था के नियमों का पालन न करना, ये सब हानिकारक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रजस्तमस बढ़ेंगे, रजस्तमस बढ़ेंगे तो सत्व को दबाएंगे, सत्व दबेगा तो क्या होगा? आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो मंत्र है पवित्र मुच्यते, तो जीवन में पवित्रता आनी ही चाहिए। तो ये बातें मंत्र के बारे में मैंने कुछ रखी। अब आगे देखते हैं, निकाल लिया सबने। अब दूसरा जो आगे उपसर्ग है, क्या है आगे? आ तो हो गया, प्र और प्रा। लौकिक उदाहरण दीजिए, इसके प्रातिलोम्य में है, मतलब विपरीत अर्थ को कहते हैं। प्रायति एतस्य प्रातिलोम्यम, एतस्य कस्य आस इति एतस्य निपात उपसर्गस्य प्रातिलोम्यम विपरीतम अर्थम आह। ये क्या था? अपनी ओर था। और ये क्या कह रहे हैं? परागत, दूर, अपने से दूर गया हुआ है। तो अब इसका लौकिक का उदाहरण तो आपको पता है, परागत आदि सारे घट जाएंगे, प्रगत प्रागत आचार्य, और प्रगत प्रगत अस्मात् देशात् नायसेति प्रनायको देश, जिस देश से नायक चला गया। प्रगत आचार्य प्राचार्य, जो आचार्य से थोड़ा ऊपर उठ गया है वो प्राचार्य, आदि आदि। अब इसमें मंत्र में देखते हैं कि मंत्र क्या कहता है। हमारा यहाँ प्रति भी घटेगा इसमें, पर हम प्रति को अभी नहीं घटा रहे, हम किसको घटा रहे हैं? प्रय को घटा रहे हैं। तो महर्षि का भाष्य भी निकाल लें जिनको मैंने दिया हुआ है। प्रतीत्यम चारु अध्वरम गोपी थाय प्रहूयसे मरुद भी अग्ने आ गई, अग्ने संबोधन में है यहाँ। तो त्यम, त्यम क्या है? ये भी त्यज से बनता है, और दित प्रत्यय जो मैंने बताया ना, जैसे तद बनता है वैसे तद भी बनता है। तो त्यम का अर्थ है तम। चारुम, चारुम का क्या अर्थ होता है कोई बताएंगे? हाँ, श्रेष्ठ। तो चर गति भक्षणयो, इससे यून प्रत्यय होता है तो चारु बनता है, और निये नित्य देर नित्यम से आदि उदात होता है। तो तम चारुम, सुंदर जो श्रेष्ठतम है उसको अध्वरम, अध्वरम नाम है यज्ञम, ध्वरि हिंसायाम धातु है, और अविद्यमान है ध्वरम अत्रिति अध्वरम, जिसमें हिंसा नहीं है। न सुभ्याम से क्या हो गया? ये अंतोदात हो गया है उत्तर पद का। गोपी थाय प्रहुयसे, गोपी थाय प्रहुयसे, गाम इंद्रियम धनम बलम वा पाति रक्षतीति गोपीत तस्मै गोपीताय प्रहुयसे, तो उसको हम प्रकर्षेण हुयसे बुलाते। तो इसमें मुख्य चीज जो देखनी है कि गोपी थाय, बाकी तो ज्यादा व्याकरण इसमें नहीं है। तो इसमें एक वार्तिक है, वार्तिक कहो या इष्टी कहो, ये निपातन किया हुआ है। गोपीत है, सब थक प्रत्यांत निपातन किया है। गोपीत उनादि में भी एक शब्द है इसका, और उसमें इष्टी है एक, ये तृतीय अध्याय में वहां भी बनाया हुआ है। तो गोपी था है, तो गाम पाती रक्षती थी गोपी था तस्मी गोपी था है। तो प्र हुए से, हुए से कौन सी धातु का रूप है? मरुद भी अग्ने आ गई, हे अग्ने मरुद भी सह आ गई आगच्छ। कितनी बात होगी अब आप अपने आप दिमाग लगाएं, कौन लगाएगा? हाँ जी गौतम जी, जब बताया गया था जितनी क्रिया है उतनी कुछ बातें होती हैं, अब लगाइए आप। हाँ तो क्या कहना चाह रहे दोनों को, अब इसके संबंध जोड़िए आपस में। चारुम अध्वरम विशेष विशेषण हो गए, चारुम अध्वरम दोनों में एक ही विभक्ति है। हाँ हाँ, और त्यम भी उसी बात को कह रहा है, तम तम चारुम अध्वरम। हाँ गोपी था ये गाय और इंद्रियों आदि की रक्षा के लिए। हाँ और किसको साथ में लेके आए, हे अग्नि मरुद भी आ गई। तो हम आपको बुलाते हैं, आप किसके साथ में आओ? हाँ मरुद के साथ में आना, क्योंकि अग्नि अकेला ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मरुद क्या है? सेना है। मरुद वैसे ये सात सात होते हैं, इसके गण 49 मरुद होते हैं अथर्वेद के अनुसार, सात सात के इनके गण होते हैं। वर्षा कराने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, मरुतों के बिना वर्षा नहीं होती है ऐसा शास्त्र मानता है। दूसरा ये इंद्र की सेना है, ये सैनिक है मरुत। तो अग्नि बुला रहा है, अगर गाय की रक्षा करनी है तो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करें आप? मरुतों को साथ लेके आए, क्योंकि अग्नि तो सेनापति है, तो सेनापति अकेला थोड़ी चलता है, आप अपने सैनिकों को लेके आए, हम आपको बुला रहे हैं। व्याकरण बाद में लगाएंगे, पहले महर्षि जी का अर्थ देख लें एक बार। बोलिए, इंद्र एक देवता है,
इंद्र की सेना जो कह रहे हैं मरुत।
हाँ
इंद्र नाम,
इंद्र जो है इदि परमेश्वरीय से रख प्रत्यय होके इंद्र शब्द बनता है, जो सबसे परमेश्वरीय मान है, मतलब एक प्रकार से देवताओं का राजा, जितने भी ये पदार्थ हैं उनको जो एक प्रकार से नियंत्रण में करने वाला है, आसुरी शक्तियों को जो टकराने वाला है, क्योंकि आसुर प्राण सब जगह फैला हुआ है, उसका नाम उस परमाणु का समझ लो पदार्थ का नाम जो है वो इंद्र है, उसी का नाम देवता। मरुत इंद्र की सेना है, मतलब शास्त्रों के अनुसार ये शतपथ ब्राह्मण में पूरा ये सब खोला, मैं तो थोड़ा वैसे ही बता देता हूँ कि ये क्या है, बाकी यहाँ तो ये बात नहीं आई है। अग्नि की भी सेना है, क्योंकि अग्नि इनका जो है वो एक प्रकार से देवताओं का जो है होता है, आह्वान करता है, तो उसके साथ भी आते हैं, देवताओं का होता की बात तो मानते ही हैं ये, पर सीधा संबंध मरुतों का जो है वो इंद्र से है, बाकी तो सब एक दूसरे का सहयोग करके चल रहे, संगठित हैं। बोलिए,
पदार्थ जो
धीरे धीरे बोलना, सबको समझ में आए जी।
जो अग्नि है भौतिक अग्नि मरुद भी विशेष पवनों के साथ आ गई, सब प्रकार से प्राप्त होता है।
अभी रुकिए रुकिए, क्या बोला?
जो भौतिक अग्नि
मरुत यानी विशेष पवनों के साथ में आ गई, प्राप्त होता है। प्राप्त होता अर्थ किया? हाँ। तो अब यहाँ तक क्या बात निकली, एक अग्नि है और वो विशेष पवन के साथ में प्राप्त हुआ है।
विशेष पवन क्या
है? मरुत। मरुत वायु भी है, ये विशेष वायु है, मतलब विशेष, इनकी गति बड़ी तीव्र है, ये सामान्य नहीं है, मतलब तोड़फोड़ कराने का काम इनका, बादलों को अगर तोड़फोड़ कराना है तो यही भूमिका निभाते हैं, वृत्रासुर संग्राम में यही आगे रहते हैं। अब उसका तो कह नहीं सकते, किंतु मुख्य रूप से अंतरिक्ष से इनका संबंध है, और अंतरिक्ष में बात जो घटना हो रही है, जो बादल बरस रहे हैं, बिजली कड़कड़क रही है, बादल नहीं बरसते तो ये उनको जो तोड़ते हैं, ये इनका मुख्य कार्य, मतलब नाम इंद्र का होता है, शतपथ ब्राह्मण में कथा भी और काम ये करते हैं। तो ये है, तो वायु यानी अग्नि एक विशेष पवनों के साथ में हमें प्राप्त हुई है, या उसको होना चाहिए। हाँ आगे,
वह विद्वानों को क्रियाओं से
है, तो इसका शब्दार्थ करो ना, भाव पढ़ रहे हो क्या?
पदार्थ
है संस्कृत वाले नहीं के। हाँ ठीक है जी।
त्यम उक्त चारुम अध्वरम प्रति प्रत्येक उत्तम उत्तम यज्ञ में उनकी सिद्धि वा गोपी थाय अनेक प्रकार की रक्षा के लिए प्रहूयसे अच्छी प्रकार क्रिया में युक्त किया जाता है।
क्या बात निकली इसमें? अग्नि विशेष पवनों के साथ में प्राप्त हुई है और वो यज्ञ आदि की रक्षा के लिए मरुत है और है? संस्कृत वाला लाओ परसों से, इसमें बात बनती नहीं क्योंकि वो निर्वचन महर्षि ने जो किए होंगे ना। संस्कृत वाला है?
है
मेरे को दो, ये हिंदी वाला मत लाए, इनको भी सुन जाएगा ना ऑनलाइन वाले बैठे हैं। तो इसमें तत्रादौ भौतिक अग्नि गुणा उपदिश्यन्ते, यहां से चला करो कि भौतिक अग्नि के गुणों का महर्षि ने इसमें वर्णन किया, अर्थात यहाँ आध्यात्मिक अर्थ इस मंत्र का महर्षि दयानंद जी नहीं कर रहे हैं, वैज्ञानिक अर्थ इसका कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रति वीप्सायाम, प्रति जो शब्द है वो वीप्सा में है, वीप्सा का क्या अर्थ होता है? हाँ, त्यम तम चारुम श्रेष्ठम अध्वरम यज्ञम गोपिताय पृथ्वी इंद्रियादि नाम रक्षणाय। देखो अभी बात खुली ना, संस्कृत से बात खुलती है। तो पृथ्वी इंद्रियादि नाम रक्षणाय, तो गोपिताय, गो का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी हुआ। गो का अर्थ क्या हुआ? इंद्रिया। गो का अर्थ क्या हुआ? गाय हुआ। और गो का अर्थ अंतरिक्ष में भी आता है। तो इन सब की रक्षा के लिए, और ये इन्होंने दिया भी है निशी था गोपी था होगा था, ये निपातित किया हुआ है गोपी थे शब्द। प्र प्रकृष्टार्थे हुयसे अध्वर सिद्धियर्थम शब्दते उच्चार्यते, हुयसे नाम है शब्दते उच्चार्यते। तो हम विशिष्ट यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपको बुलाते हैं, अर्थात यज्ञ की रक्षा में हमें कुछ वो है कि कहीं आसुरी तत्व आके यज्ञ को हानि ना करें। इसको यदि अंतरिक्ष में घटाएंगे, मरुत क्योंकि अंतरिक्षवाची है, तो इसमें वही है कि आसुरी तत्व जब बादलों को बरसने नहीं देते, बादल हैं, लोगों को अपेक्षा भी है, खेती सूख रही है, तो फिर उनको नष्ट करने के लिए मरुत अग्रसर होते हैं। मरुद भी वायु विशेष ही सह अग्ने भौतिक समन्तात् आगही गच्छति अत्र लडर्थे लोट, तो लट अर्थ में लोट का व्यत्यय माना है, बहुलम छंदसी से सबका लुक मान लिया है। तो यहां तक क्या बात निकली? पहला एक अग्नि एक पदार्थ हुआ, अग्नि पदार्थ किस रूप में हुआ? सेनापति तो है ही, भौतिक अग्नि माना है ना, भौतिक अग्नि है। तो उस अग्नि को जो श्रेष्ठ यज्ञ है उसकी रक्षा के लिए मरुतों के साथ में हमने आह्वान किया है। भौतिक अग्नि को यज्ञ की रक्षा के लिए, श्रेष्ठ यज्ञ की रक्षा के लिए हमने मरुतों के साथ में आह्वान किया है। किस लिए किया है? क्योंकि इंद्रियां, गाय, यज्ञ आदि की रक्षा के लिए किसी का आह्वान करते हैं। सेना का है, सेनापति तो मतलब सामान्य स्थिति नहीं है, विशेष स्थिति को ये मंत्र बता रहा है। तो हमने उसका आह्वान किया है, तो वो क्या करे फिर आके? अग्नि आ गई, हे अग्नि आ गई, तो आप हमें प्राप्त हो जाइए। तो हमें यज्ञ की आपसे रक्षा करानी है एक बात, पृथ्वी की रक्षा करानी है दूसरी बात, और इंद्रियों की रक्षा करानी है तीसरी बात, और महर्षि ने आदि शब्द जोड़ा है तो गाय भी इसमें आ गया है, अंतरिक्ष भी आ गया। तो इतनी चीजों की रक्षा कराने के लिए हमने अग्नि का मरुतों के साथ में उसको निमंत्रण दिया, आह्वान किया, पुकार की है, प्रार्थना की है। यहां तक बात में कोई समस्या नहीं। अब ये भौतिक अग्नि कैसे यज्ञ की रक्षा करेगी और मरुत क्यों रक्षा कर सकते हैं, बात इतनी है। तो इसके लिए थोड़ा हम मरुत को जान लेते हैं, मरुत क्या है। तो मरुतों के बारे में वैसे तो लगभग शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में 35 के आसपास अर्थ मरुतों के हैं कि मरुत क्या क्या है। वायु को भी मरुत माना है, प्राण को भी मरुत माना है, साथ साथ के उनको गण करके उनकी संख्या भी बताई है कि ये 49 मरुत हैं। मुख्य रूप से जो मरुत यहाँ घट सकता है वो है मरुतो रश्मया, सूर्य की जो रश्मियाँ हैं वो मरुत हैं। दूसरा सप्त ही मारुतो गण है, मरुतस्य इदम मारुतम, मरुतों के जो गण हैं वो सात हैं और एक गण में सात होते हैं, तो 49 हो गए। प्राणा ही मारुता, जो जहां जहां प्राण चल रहा है उसका भी मरुत से संबंध है, क्योंकि महर्षि ने भी इसका विशेष प्रकार की वायु किया है। अब ये जो रश्मियां हैं ये कैसे यज्ञ की रक्षा कर सकती हैं, बात अब इतनी आ गई, क्योंकि मरुतों को हमें रक्षा करानी है पदार्थ की, अग्नि साथ में आया है, तो ये दोनों मिलके पृथ्वी की एक बात, इंद्रियों की दूसरी बात, गाय की तीसरी बात, अंतरिक्ष की चौथी बात, तो ये कैसे रक्षा कर सकते हैं, बात इतनी है। तो अगर ये भौतिक अर्थ क्योंकि महर्षि ने किया तो हमें भौतिक इसका आविष्कार करना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा कृत्रिम प्रयोग। जो हम रश्मियों को लेके जो भी चीजें बनाएंगे, जो भी अपने जीवन व्यवहार में उतारेंगे, उसका नाम होगा कृत्रिम प्रयोग, मतलब हमारा अपना बनाया हुआ कोई हमने तकनीक बनाई, उसको रश्मियों को इकट्ठा किया या रश्मियों का विशेष प्रयोग करके अपने इंद्रियों की रक्षा की, शरीर की रक्षा की, विद्युत उत्पन्न की, ये सब कृत्रिम में आते हैं। किंतु जो नित्य है ये कृत्रिम यज्ञ होगा, और नित्य जो यज्ञ हो रहा है सूर्य की रश्मियों के द्वारा, वो कैसे रक्षा कर सकता है उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य रश्मियां यदि ना हो तो क्या होगा, क्यों जी बलदेव जी, इंद्रियां क्या काम करेंगी, है ना, सूर्य रश्मियां नहीं हो तो क्या होगा, भयंकर घुप अंधेरा रहेगा। जब हमेशा अंधेरा रहेगा, कुछ दिन व्यक्ति भयंकर अंधेरे में रहेगा, तो सारी इंद्रियां अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। गाय की रक्षा कैसे कर सकती हैं सूर्य रश्मियां, ये भी है। दूसरा जो देसी गाय की बात है, वो विशेष जो उसको ऊर्जा मिलती है इसलिए गाय खुली रहनी चाहिए, शास्त्रों में आता है। और दूसरा कहते हैं कि उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति जो है ना रश्मियों को ज्यादा है, इसलिए काली गाय का जो दूध है ना वो ज्यादा है। क्यों शास्त्र प्रमाणित करता है कि काली चीजें की ओर सूर्य की रश्मियां तीव्र गति से आती है और वो संग्रहण का साधन बन जाता है, इसलिए जब सूर्य की रश्मियां गाय के अंदर ज्यादा मात्रा में जाएंगी तो वो उसकी दूषितता हटा देती है और सत्व बढ़ा देती है। सूर्य की रश्मियों में सत्व है, और कुछ का मत ऐसा भी है कि वो स्वर्ण के कणों में परिवर्तित हो जाती है, कोई सूर्य केतु नाड़ी है। दूसरा गाय के अंदर अथर्वेद का एक पूरा ही सूक्त है, जो देखा होगा ना कुछ लोग चित्र में फोटो बनाते हैं गाय के अंदर ये देवता है, सारी तो उसमें नहीं है, वो गणेश जी का भी बना देते हैं दूसरा भी, किंतु ऐसा है पूरा का पूरा सूक्त ऐसे, ये तत्व है कि ये तत्व जो है ना गाय के और में रहते और मनुष्य में भी रहते हैं। अथर्वेद का एक सूक्त है कि जब चीजें बनाई तो देवताओं के लिए शरीर बना बने कि भाई कहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे, तो एक कथा है कि शतपथ में भी आई है थोड़ी, कि गाय का भी शरीर देखा, उसका भी देखा, उसका भी देखा, और कोई शरीर पसंद नहीं आया, गाय का मनुष्य का ही आया देवताओं को कि भाई ये हमारे अनुकूल है। तो गाय की रक्षा रश्मियाँ हमारी खूब करती हैं, सबकी करती हैं, तो ये रश्मियाँ होंगी मरुत। और अग्नि, क्योंकि उस अग्नि के साथ ही आते हैं आग्ने तत्व, तो उसमें दो ही तत्व हैं, द्वयम व इदम अस्ति न तृतीयम, उष्णम व शीतम व, तो जब मरुत आते हैं तो साथ में रश्मि आती है, तो ऊष्मा लेके भी आती है, तो ऊष्मा से ही सारे ऊर्जा के कार्य, हमारे शरीर में भी जो ऊष्मा ना हो तो व्यक्ति मृत हो जाता है, ठंडा होने लगता है तो तुरंत घबरा जाता है, तो सारा कुछ रक्षा वही कर रही है बुद्धिमान व्यक्ति। ये तो हो गया सामान्य, हमें जान ही है, निमित्त जान बोल रहा हूं मैं तो भी, पर बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो इन रश्मियों का प्रयोग करके अपनी अनेक प्रकार की उन्नति को कर लेता है, स्वास्थ्य के रूप में उसका विनियोग कर लेता है, भौतिकी के रूप में उसका विनियोग कर लेता है, चिकित्सा के रूप में उसका विनियोग कर लेता है, ऊर्जा के रूप में। मंत्र तो इसी बात को कह रहा है कि यज्ञ क्या है। महर्षि दयानंद की परिभाषा में कोई यज्ञ बताएं, क्योंकि महर्षि ने कहा यज्ञ की रक्षा के लिए बुला रहे हैं, तो यज्ञ क्या है भाई वो मतलब महर्षि दयानंद ने यज्ञ की परिभाषा जो की, अगर वो नहीं समझी तो यज्ञ को समझना बहुत मुश्किल है। अग्निहोत्र, हाँ बोलिए बोलिए, चलिए अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो पदार्थ विज्ञान और जो शिल्प व्यवहार है, जो जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। ये महर्षि की परिभाषा है आर्योद्देश रत्नमाला में, और उन्हीं महर्षि जी का भाष्य हमारे पास है, तो दोनों का संबंध अपने आप ही घटेगा। तो महर्षि क्या कहना चाह रहे हैं, जो पदार्थ विज्ञान और जो शिल्प व्यवहार है, जो जगत के उपकार के लिए किया जाता है, तो रश्मियों से ऐसा कुछ हमें बना भी सकते हैं और उसका अपने प्रयोग करके हम सुखी भी हो सकते हैं। महर्षि ने इसका अर्थ आध्यात्मिक नहीं किया, भौतिकी किया। तो भौतिक अग्नि के और मरुतों के जितने विनियोग करके हम यज्ञ की, पृथ्वी की, पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अब कोयला निकल रहा है, कोयला जल रहा है, अगर सूर्य का ये सारे विमान गाड़ियां सूर्य रश्मियों से चलने लगे तो पृथ्वी की रक्षा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इतना भयंकर प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल की अपेक्षा नहीं बचेगी। तो अनेक प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति आगे लगाता रहता है, ये घट जाता है। अब व्याकरण लगा लेते हैं, है? गाय की रक्षा, सूर्य की रश्मियां आई नहीं आई, तो गाय ने उसको अपने अंदर ग्रहण किया नहीं किया, वो तो नित्य यज्ञ की मैं बात कर रहा हूँ। कृत्रिम यज्ञ तो है कि जब आप उसको बना के करेंगे, और नित्य यज्ञ तो है कि गाय को धूप में छोड़ो, जिनमें आग्नेय तत्व हैं, रश्मि औषधियाँ भी ऐसी हैं। औषधियाँ दो प्रकार की होती हैं, शीतवीर्य और उष्णवीर्य। यानी शीतवीर्य जिनमें आप तत्व है, सोम तत्व, और उष्णवीर्य जिसमें आग्नेय तत्व है। तो आग्नेय तत्व वाली औषधियों को दिया जाए, जो चीजें होती हैं जैसे यव है, यव में वो चीज है, व्रीही में आप तत्व है, तो ऐसी चीजें, वो तो आगे की बात है, मैं तो कैसे घट सकता है वो थोड़ा बताया है। अब व्याकरण लगाते हैं, बिल्कुल आप और हम सबका ये हालत है, वर्षों तक वहां जाके देखिए, जो लोग अंदर ही रखते हैं ना, उनको इंजेक्शन देना पड़ता है, उनको बहुत चीजें देनी पड़ती हैं, और बीमार तो रहेंगे। आप और हम ही हमेशा कमरे में बंद रहें, चिकित्सा की दृष्टि तो अलग है, मैं भी रह जाता हूँ 40-40 दिन, पर हमेशा ही रहें तो हमारे देख लेना पीलापन आ जाएगा। जिनको पेड़ के नीचे होती हैं, जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता, वो औषधियाँ पीली पीली होती हैं। तो सूर्य की रश्मियाँ क्या है, मैं तो ये कहता हूँ भविष्य में जितने भी ऊर्जा के साधन हैं, और सूर्य जो है ना भविष्य का चिकित्सक भी है और ऊर्जा का केंद्र अभी भी है, क्योंकि विज्ञान अभी इतना पल्लवित नहीं है कि वहां तक पहुंच पाए। बाकी विमान भी चलेंगे उसी से, आप देख लेना, सब कुछ उसी से चलेगा। एक वहां के वैज्ञानिक हैं रसिया के, जब हम एक बार रसिया गए 2010 में, वहां किसी ने हमें बताया कि उन्होंने कोई खोज की है कि सूर्य रश्मियां एक घंटे में इतनी ऊर्जा पूरी पृथ्वी पे देती हैं कि एक साल तक जितने ऊर्जा के कार्य हैं वो केवल सूर्य को उसको ग्रहण कर लें तो उस, और भारत में तो 300 दिन तो मान ही लो, 60 दिन छोड़ दीजिए, है ना, इतनी ऊर्जा है। पर पेट्रोल लंबी है, वो ज़्यादा आविष्कार होने नहीं देती, नहीं तो वो फिर टेंटों में आ जाएंगे जिनका पेट्रोल बिक रहा है। और होगा, ये भविष्य में होगा, अभी विज्ञान तो अभी बालपन में चल रहा है, अभी इसको थोड़ा विस्तार होने दें।
जी, जो आधुनिक वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं जहाँ से मतलब सूर्य की रश्मि निकलती है, वो मतलब एक ओजोन परत से होकर।
देखो जी, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कि वैज्ञानिक क्या मानते हैं, मैं तो इस ये क्या मानता है, मैं तो वो बता सकता हूँ।
वेद में मतलब ऐसा कुछ है जो
पृथ्वी के, पृथ्वी पे परतों का तो विधान है, पृथ्वी जो है 7 प्रकार का, उसमें वो भी माना है, सीमा भी मानी है, पर वो ओजोन उन्होंने किस रूप में मानते हैं क्या है वो तो वो जाने, पर ऐसा क्षेत्र तो है वायु के, वायु के क्षेत्र तो है। वो होगा वो जो उनका है, पर सूर्य की रश्मियाँ वैसे तो कुछ घातक भी हैं, मंत्र में भी एक जगह आया है कि जो कुछ सूर्य की रश्मियाँ हैं वो थोड़ी घातक भी हैं, पर उनके समय भी निश्चित हैं कि वो कब से क्या करती है, वो निरुक्त में आ जाएगा, सूर्य के 12 रूप जो हैं कैसे कैसे घटते हैं 24 घंटे में। हम आगे चलते हैं, व्याकरण लगा लें, एक मंत्र में तो लगाएं। प्रतीत्यम चारुम अध्वरम, तो प्रति लगाइए निपाता हो गया, त्यम को कौन करेंगे, अच्छा। और वैसे महर्षि का भी अगर उनादि कोष आप देख लो तो इसका बहुत सुंदर अर्थ किया हुआ है ना, उनादि है किसी के पास, निकालो 1132 निकालो। तेजी तनी यजिभ्यो डित, इससे अति प्रत्यय होके ये बनाया, डित होने से डित बस्यापि टेर लोपे से इसका लोप हो गया, तो त्यजति क्लेशादि हीनो भवति त्यद, जो क्लेश त्यज हानव धातु से बना, जो क्लेश आदि से जो रहित होता है, महर्षि ने इसका नाम ब्रह्म भी किया हुआ है ना,
ब्रह्मणो नामानि त्रयाणि,
हाँ तो ब्रह्म सर्वनाम है ईश्वर का अर्थ भी, क्योंकि क्लेश आदि से रहित ईश्वरीय मनुष्य तो पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, तो त्यत का अर्थ हम तो यहाँ सर्वनाम ले रहे हैं वैसे तम, और वैसे यज्ञ भी क्लेश आदि से रहित ही होता है, चारु मध्वरम, यज्ञ में तो कोई क्लेश होता नहीं, जिनका क्लेश होता है उनका भी दूर हो जाता है,
तो ये
उसका
विशेषण हो जाएगा।
हाँ, तम से किसको कह रहे हैं, चारुम अध्वरम, हाँ तो चारुम करो, अब आगे निर्वचन, चरगत भक्षण धातु है, क्या करेंगे इससे, द्री सनी जनी चरिभ्यो युण, एक ऐसा सूत्र है पहले अध्याय पहले पाद का तीसरा चौथा सूत्र देख लेना, तो उससे युण प्रत्यय किया, तो ये नित्य देर नित्यम से क्या हो गया, आदि धातु, चरती चक्षुर आदिशु इति चारु, चरती चक्षु आदिशु इति चारु, तम चारु, ये नित्य देर नित्यम, नित में भी लगता है नित में भी लगता है, तो ये इससे क्या हो गया, आदि धातु हो गया, और चारु का अर्थ शोभनम भी है, महर्षि ने कहा चारु शोभनम, तो शोभनम, अध्वरम, अध्वरम को करो, निरुक्तकार ने कहा अध्वर इति यजनामे तत्प्रतिषेध है, जहां हिंसा का प्रतिषेध है, जहां हिंसा किसी प्रकार की नहीं हो सकती, उसका नाम क्या है, अध्वर है, तो निर्वचन की दृष्टि से अविद्यमान ध्वरम अत्रिति अध्वरम, जिसमें हिंसा नहीं है, ध्वरी हिंसायाम धातु है, और उससे क्या प्रत्यय करेंगे, अब किससे करोगे, ध्री हिंसायाम, तो अब प्रत्यय होगा, तो ध्वरम नाम है हिंसा, और अविद्यमानम ध्वरात्रिति अध्वरम, जिसमें हिंसा नहीं है, स्वर कैसे लगेगा इसमें भी थोड़ा कठिन है, पहले तो वो लगाया करो ना जो लगते हैं, ये तो अंतिम सूत्र लगा दिया आपने, लगाओ चलो, तो ध्वरती अस्मिनिति ध्वर, जिसमें हिंसा की जाती है वो ध्वर हो गया, और अविद्यमानम ध्वर अत्रिति अध्वर अहिंसित हो गया, नैशुभ्याम लगा लो, समासस्य अन्तोदात्त था उसके बाद नैशुभ्याम लगाया, तो नैशुभ्याम से क्या हुआ, उत्तर पद का बहुव्रीहि समास में अंतोदात्त हो जाता है, उत्तर पद का अंतोदात्त हो जाता है, तो ये हाँ नैशुभ्याम ही तो कह रहा हूँ मैं, तो उत्तर पद का अंतोदात्त कर रहे हैं, वो अंत में सूत्र है 150 160 70 160 का सूत्र, हाँ उसी को तो कहा रेफ के आकार को हो जाएगा, यहाँ वही दिया है ना, उसी को दिया अंतोदाती है, तो यहाँ तक कोई समस्या, अब आगे चले, गोपी था ये, महर्षि ने क्या अर्थ किया था इसका, हाँ तो पृथ्वी इंद्रिया आदि नाम, तो जो चार अर्थ गो के घटते हैं वो सारे हो जाएंगे, तो तम रक्षणा है इनकी रक्षा के लिए, तो इसका भी निर्वचन को लो, गाम वाणीम पृथ्वीम अंतरिक्षम पाति रक्षति इति गोपीत है तस्मै गोपीथाय, इनकी रक्षा के लिए, तो इसमें वैसे तो निपातन किया हुआ है किंतु स्वर भी लगा लेते हैं थोड़ा, थक प्रत्यांत है। आरक्षणे धातु से थक प्रत्यांत है। इतु कैसे हुआ, कौन बताएगा? आ को ई कैसे हुआ? थक घुमा स्था गा पा जा तिसाम हली, ठीक है। तो इससे ही तो हो गया, तो गोपी था तस्मय गोपी था, तो इंद्रिया आदि के रक्षणार्थ। यहाँ तक कोई समस्या? तो स्वर कैसे लगेगा, ये बात तो आ गई। गति कारक उपदात कृत, कृत है ये, तो इससे क्या हो गया, उत्तर पद का प्रकृति स्वर हो गया। तो उत्तर पद में किसका स्वर था, प्रत्यय का था, वो हो गया। आप कहाँ सोच रहे हो, यहाँ तक कोई समस्या? स्वर कैसे लगा, उत्तर पद का प्रकृति स्वर होता है, तो उत्तर पद में क्या था, प्रत्यय स्वर था, पा से पीठ बना था, हाँ तो थक प्रत्यय का अपना हो गया। हाँ तो अंतोदात्ती है ना, पीठ शब्द था ना, गौ कर पीठ का समास किया है तो गो पीठ बना है, जब गो पीठ बना है तो क्या स्वर लगेगा, तो गति कारकों पर पदार्थ कृत, ये लग गया। अब मरुद भी आगे शब्द क्या है, वो तो अध्वर के बाद है ना आचार्य जी, उदात से उत्तर अनुदात को स्वरित हो जाता है, जब ये अनुदात हो गया ना सारा तो उसको स्वरित हो जाएगा, और प्र प्र तो हो ही गया, प्र कैसे हो गया, बस अभी को छोड़ दो, निपाता अद्युदाता अभिवर्जन उपसर्गाश्च अभिवर्जन, अभी को छोड़ दीजिए, बाकी सब आदि उदात, अभी हमेशा अंतोदात होता है, बस ये याद रखिए। तिंगंग तिंग से क्या हो गया, एक उतात अनुदात से एक श्रुति होगी। मरुद भी अग्न आ गई, अब मरुद को और सिद्ध कर लीजिए, तो मृंग प्राण त्यागे, इस धातु से मरुद शब्द बनता है, तो उसमें मृगे रुति, ये पहले अध्याय का ही है उणादि का, क्योंकि उणादि देखो कितना काम आ रहा है, मैंने पहले कहा था ना कर हमारा बीच में तो पाठ बंद हो गया था, कि उणादि पक्का होना चाहिए वेद समझने के लिए, हर मंत्र में एक उणादि की सिद्धि आ जाती है, व्याकरण तो प्रथम रुति तो कम आ रही है। तो मृगेर रुति, तो मृग इस धातु से क्या होता है, मृग और इससे उति प्रत्यय होता है, तो मृग प्राण त्यागे से उति प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया, मृग मर मरुत मरुत बन गया, भाई उति हुआ ना, गुण कर लिया तो क्या हो गया, मर और उत मिला दिया मरुत, और मरुत का क्या अर्थ किया है, म्रियते मारियती इति वा, हाँ और मारता भी है, मारता किसको है, शत्रुओं को, वृत्रासुर संग्राम में सबसे आगे यही रहते हैं, और म्रियते इति मरुत, मरते कैसे हैं ये तो हमें पता नहीं है, पर मारते जरूर हैं, है? चलो, जब उसको मनुष्य जाति को भी मरुत कहा है, महर्षि दयानंद का ही निर्वचन है, मृियते मारियति तिवा मरुत है मनुष्य जाति, तो मनुष्य जाति तो मरते ही है, प्राण त्याग हो जाता है इनका, और मारने में किसका अर्थ हो जाएगा, जो इंद्र की सेना है, तो वो मरुत हो गया। तो क्या स्वर रहा है यहाँ, भाई उति प्रत्यय है, तो तित कहा सोच रहे हो, हाँ प्रत्यय प्रश्चय, इसलिए मरुद क्या है, मध्यवदात। तो मरुद भी हे अग्नि आ गई, मरुद के साथ में अग्नि देवता आ जाइए, तो अब अग्नि का निर्वचन और कर ले, कार्य पूरा हो गया। अगिगत धातु से क्या हुआ, अंगति गच्छति प्राप्नोति जानाति इति अग्नि, भौतिक परमेश्वर हुआ महर्षि जी का ये रचन है, तो यह तो भौतिक अग्नि है यहाँ, तो क्योंकि भौतिक अर्थ किया महर्षि ने, परमेश्वर अर्थ नहीं किया है, तो ये भौतिक अग्नि है, तो इससे ये बन गया। अब जो नी प्रत्यय हुआ है तो स्वर कौन सा होगा, तो प्रत्यय स्वर रहा, किंतु यहाँ तो कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा।
आमंत्रित संत है,
कैसे पता लगा कि आमंत्रित है यहाँ? हाँ, हे अग्ने मरुद भी सह आ गई आगच्छ प्राप्नुहि। तो हे अग्नि, आप जो है मरुतों के साथ हमें प्राप्त, लग गया स्वर, सिद्धि होगी। आप तो लगा ही लिया है, गई का निघात हो ही गया है। अब एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं। तम चारु अध्वरम प्रति हुए से के साथ में ये जुड़ जाएगा।
फिर प्रका का
कैसा? दोनों का जोड़ लो, क्या समस्या? क्योंकि प्रति का स्वतंत्र अर्थ है, किसी के साथ तो जुड़ के कहेंगे ना, कल ही तो पाठ में आया था। वैसे तो स्वतंत्र अर्थ भी कहते हैं गार्ग्य के अर्थ में। हाँ, तो इसको पुनर पुनर अर्थ कर देंगे। पुनर पुनर हुए से, पुनर पुनर प्रकर्षण हुए थे, ऐसे भी हो जाएगा। और किस लिए प्रतीक तो हम यहाँ क्योंकि जोड़ नहीं रहे ना, इसका जोड़ रहे हैं। प्रतीक जब आएगा, जब उसका दूसरा मंत्र ले लेंगे, क्योंकि ये तो इसमें आ गया। असमंतात बार बार आइए, नहीं उसी के साथ जोड़ लो, आ के साथ जुड़ी गया है। तो तम चारु अध्वरम गोपिताय प्रहुयसे, हम पुनर पुनः उस सुंदर यज्ञ की को रक्षित करने के लिए आपका आह्वान करते हैं। किसका आह्वान करते हैं? जो इसका देवता है वो कौन है? अग्नि और मरुत, इस मंत्र के दोनों देवता माने हैं। तो आपका हम आह्वान करते हैं, किंतु आप कैसे आए? हे अग्नि मरुद भी सह आ गई आगच्छ, तो अपनी सेना को ही साथ में लेके आए। ये एक अर्थ हुआ, भौतिक अग्नि से रक्षा करनी है, यज्ञ की करनी है, पृथ्वी की करनी है, गाय की करनी है और अंतरिक्ष की करनी है। जहां जहां भी आसुर तत्व होगा, अग्नि वही रक्षसाम अपहंता। अग्नि जो है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ये राक्षसों को रक्षंती आत्मानम अस्मात इति रक्ष, जिससे अपने आप को बचाया जाता है वो रक्ष है। तो उसको अग्नि नष्ट करता है। अग्नि वृत्राणी जंगनति, ये मंत्र है। अग्नि वृत्र को, जो आवरण करने वाले पदार्थ आसुरी तत्व हैं, उनको नष्ट करता है। किंतु अग्नि कैसे नष्ट करता है? अपनी मरुतों की सेना से, सहायता से करता है। तो हमारे मन में भी अगर इसका आध्यात्मिक अर्थ करें, तो हमारे मन इंद्रियों की रक्षा करनी है, मन की रक्षा करनी है, अंतकरण की रक्षा करनी है। और क्रोध ईर्ष्या द्वेष क्या है? सारे शत्रु हैं, वृत्र हैं, ये आवरण कर लेते हैं अच्छी चीजों का। तो इनकी रक्षा के लिए हम अग्नि को बुला रहे हैं, मरुतों के साथ में आओ और इनको ठीक है। सात्विक प्राण दोनों ही माने जाएंगे। नहीं, उसको और भी माना जा सकता है। प्राणों के भी तो पांच विभाग हैं।
कौन सा प्राण है?
अग्नि को ब्रह्म प्राण मान लो और बाकी को दूसरा। ठीक है, तो जी
गायत्री छंद है, तो गायत्री छंद में से क्या
पृथ्वी पे ऊपर घटना घटित हो रही है? ऐसे तो अग्नि तीनों रूपों में फैला हुआ है, किंतु एक तो प्रधान अर्थ होता है और एक संबंधित अर्थ होता है जो इव अर्थ में निकाला जाता है। जैसे अग्नि का अर्थ तो अग्नि है, किंतु उसका अर्थ हम सेनापति भी निकालते हैं, तो इव अर्थ है कि जैसे अग्नि के गुण है वैसे ही सेनापति में दिखाई देते हैं। तो इव अर्थ में तो अर्थ निकल जाएगा, बाकी मूल घटना तो पार्थिव है। बाकी क्योंकि ये भी तो एक सामान्य है, जैसे व्याकरण सामान्य है, वैसे जो बताया जाएगा कि भाई छंद इसी में घटित होगा, ये भी सामान्य। बाकी अर्थ का संबंध जुड़ रहा है, ब्राह्मण पूरा खोलता है, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। तो मैं आदरणीय आचार्य जी से निवेदन, नहीं आचार्य जी, आचार्य जी थोड़ा आपका हो जाए, अच्छा लगता है ब्रह्मचार्य को। आपकी जो वाणी में तेज है ना, वो जमता
वो एक कहावत है हरियाणा में, बोले डूम का छोरा रोएगा तो ताल में। वो झगड़ा है, बाकी कुछ नहीं। ये तो आपका आशीर्वाद मानूंगा। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता का अवसर है कि वेद मंत्रों का हम सीधे साक्षात कर सके। आप जैसे मृतों की चर्चा कर रहे थे, आप जैसे वेद में देखते हैं ना, वो प्रयोग आपको लोक में भी मिलते हैं। अग्नि के लिए हमारे यहां एक शब्द है मरुत्सखा, मतलब अग्नि अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। यदि आप वायु हटा दो तो अग्नि जल नहीं सकता। तो भौतिक अग्नि के जलने के लिए तो मरुद भी अग्नि आ गई, तो वो अग्नि का तत्व जो है लौकिक में मरुतों के बिना अधूरा है। तो उसको जब हम यहां से देखते हैं तो यहां समझ में आ जाता है। नियम क्या है कि जो लोक में है वो वेद में है, जो वेद में है वो लोक में है। अंतर इतना है कि लोक में घटता हुआ दिखता है और वेद में घटता हुआ समझ में नहीं आता है। तो निरुक्त हमारे साथ क्या करता है कि उस चीज को समझा देता है। उसी को आप नित्य इतिहास जो कुछ कह रहे हो, वो नित्य इतिहास तो हर समय, नित्य का मतलब सदा होने वाला, होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा, ये जो इतिहास है वो नित्य इतिहास है। तो उसको हम इसके माध्यम से समझ पाते हैं। तो ये मरुद भी रग्न आ गई, ये जो सबसे बड़ी बात है। एक मंत्र आता है, क्या है, इंद्र इंद्राय हविर निरूप्य मरुद्भ्य संप्रदित संचकार। ये निरुक्त में एक अन्य वाला प्रकरण है, उसके निर्वचन में ये आता है,
नूनम वाला।
नूनम अस्ति नोष्व कस्तद्वेद यदद्भुतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरिण्यम उताधीतम विनश्यति। तो ये क्या है कि इस तरह समझने से जो बात हर जगह की संगति है वो बड़ी आसान लगती है। वो कहता है मरुद्भ्य इंद्राय हविर निरूप्य मरुद्भ्य प्रदित संचकार। मतलब घोषणा तो ये की थी कि भाई इंद्र को दूंगा, और हो सकता है मरुत पहले चले गए, उसने उनको ही दे डाला, उनको दे डाला तो सब परिदेवयान चक्रे, वो आगे रोने लगा, बोले ये क्या हुआ, कहा तो मुझसे था और दे इनको दिया। अब सामान्य घटना तो ऐसी ही लगती है, लेकिन खुलता तब है जब आप इसको निरुक्त से इस तरह से खोलते हैं। तो ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाता, पढ़कर मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है, मतलब भूल भाल गया हूं मैं, लेकिन इतना पता है कि ऐसा है, क्या है ये मुझे नहीं पता। तो निरुक्त के बांचने से भी लाभ होता है। और कल मैं कह रहा था पंडित जी से कि वैसे तो ज्ञान की और सबसे ऊपर वेद की विशेषता, आचार्य सायण ने एक बात कही है कि वेद जो है किसी भी परिस्थिति में मतलब लाभ ही करता है, हानि नहीं। तो उसने एक बात कही कि मान लो मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे अर्थ भी समझ में नहीं आता, तो केवल वेद पढ़ने से फिर मुझे क्या लाभ होगा। तो बोले ये लाभ होगा कि यदि वो समय तुमने वेद पढ़ने में नहीं लगाया था ना, तो वो किसी बुराई में लगता। तो इसलिए लाभ होना ही होना है। और ये जो ऋषि दयानंद का जो सबसे बड़ा काम हमको उपलब्धि के रूप में मिल रहा है, इससे जो जितने दुनिया के संकट है ना, वो केवल इसलिए हैं कि वो मूल ज्ञान को जानते नहीं हैं, और इसलिए वो मनुष्यकृत ज्ञान से चलते हैं, इसलिए वो गड़बड़ करते हैं। वो ज्ञान अधूरा है, स्वार्थपरक है, अज्ञान मूलक है, इसलिए वो गड़बड़ है। और इसलिए वैदिक ज्ञान अच्छा है कि इसमें जो कुछ है वो प्राकृतिक है, और जो प्राकृतिक है वो ठीक है। तो हमारे अंदर की प्रकृति को यदि हम बाहर की प्रकृति से जोड़ेंगे तो संघर्ष नहीं होगा। रोग कुछ भी नहीं है, संघर्ष है। एक पंक्ति ये बहुत बोलते हैं वो, लेकिन अधूरी बोलते हैं, पूरी नहीं बोलते। वो पंक्ति बड़ी कमाल की है, चरक की है। वो पंक्ति पता है क्या है, रजस्तमोभ्याम निवृत्ता तपो ज्ञान बलेन ये एषाम त्रयिकाल ममलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तम। मतलब रोचक बात क्या है, वो ये कह रहा है कि आप्तों को आप्त कहते क्यों हैं, आप्तों को आप्त कहते क्यों हैं। कहता है रजस्तमोभ्याम निवृत्ता। अच्छा, बिल्कुल निवृत्त तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन नियंत्रित हो सकता है। मतलब हमारे साथ मुश्किल क्या होती है कि सत्व रजतम तीन हमारे पास हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है कि हम सदा सत्व में रहें। कभी भी परिस्थिति में रज पैदा हो सकता है या तम पैदा हो सकता है। ऋषित्व तो किस चीज में है, रजस्तमोभ्याम निवृत्ता। रजोगुण और तमोगुण का जो वर्चस्व है वो उनके अंदर कभी उद्भूत नहीं होता। तो और वो होता कैसे है, तपो ज्ञान बले नहीं है। तपस्या से और ज्ञान से, मतलब कर्म और ज्ञान दोनों के कारण से होता है, तपो ज्ञान बले नहीं है। तेषाम त्रैकाल ममलम ज्ञानम, उनका ज्ञान वो प्रत्यक्ष वाले लक्षण का ज्ञान हो जाता है। अव्याहतम त्रैकालम अमलम, मतलब निस्संदेह होता है, शुद्ध होता है और सदा रहने वाला होता है। त्रैकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, इतने विशेषण दे डाले। वो लोग कौन है? आप्ता। वो कौन है? शिष्टा। वो कौन है? विबुद्धा। अब इसके बाद की जो बात है वो बड़ी रोचक है। विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम, वो जो बोलते हैं वो संशय की संभावना ही नहीं बचती है। क्यों? सत्यम वक्षंती, वो बेचारे बड़े गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? कि उनके पास रजोगुण और तमोगुण आए ही नहीं। तेषाम त्रैकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम, सत्यम वक्षंति ते कस्मात्। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये भाषा की बात इसी में है। सत्यम वक्षंति ते कस्मात्, असत्यम नीरजस्तमा, नीरजस्तमा है तो अब सत्य के अतिरिक्त वो बोल भी कुछ नहीं सकते। चलिए इस बात के साथ बात समाप्त करते हैं। आचार्य जी की बात से कोई बात याद आ जाती है तो अच्छा रहता है। धन्यवाद
आचार्य जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उनका उच्चारण। तो सूचना दे देता हूँ कि मैं अभी निकल जाऊंगा थोड़ी देर में जयपुर के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ना जाना अपना। तो अगर वहाँ गुरु जी के ऊपर है, क्योंकि मैं वहाँ जहाँ पढ़ने जा रहा हूँ उन्होंने ये कहा था कि आओगे उसके बाद ही निश्चय करेंगे, मतलब कैसे पाठ चलेगा क्या, क्योंकि वहाँ तो मैं जब होता था तो रोज चला जाता था। तो हो सकता है कि फिर मैं सोमवार को आऊँ, वो कहें कि भाई मेरे पास यही समय है। तो सोमवार को फिर ऐसे कर सकते हैं कि हम रात को 8 से 9:30 पाठ चला लें आत्मनिरीक्षण के बाद ही, ऐसा हो सकता है ना जी? क्यों स्वामी? क्योंकि मैं भी वहाँ अपनी ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि 2 दिन मेरे को मिलने हैं वहाँ। तो कैसे होगा तो मैं वहीं जाके बता पाऊँगा, मैं फ़ोन कर दूँगा। अगर एक ही दिन का समय है तो मैं कल सायंकाल तक आ जाऊँगा, और यदि कहें कि भाई नहीं सोमवार को भी है समय तो दोपहर तक पढ़ के, वहाँ से 2.5 घंटे लगते हैं यहाँ, तो मैं आ जाऊँगा आते ही अपना सायंकाल पाठ चला देंगे। तो समय को हम सदुपयोग कर लेंगे, ये समय होता भी है, दिनचर्या भी पूरी हो चुकी होती है, उसके बाद फिर आत्मनिरीक्षण के बाद में मंत्र पाठ होता है, तब तक पाठ पूरा कर देंगे। ठीक है ना जी? ठीक है। ऑनलाइन वालों को भी ये सूचना है जी कि कल तो पाठ नहीं होगा, सोमवार को संभावना है कि इसी समय हो, नहीं तो रात को 8 बजे होगा। धन्यवाद। ये जल्दी से सामान पहुंचा दीजिए, मैं निकल रहा हूँ, फिर 11:30 बजे गाड़ी है।